الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. आज हम सूरत अल हुजरात आयत नंबर 11 से 18 तक करके इसको मुकम्मल करेंगे। आसान तर्जुमा लेकिन सबसे मुश्किल आयात प्रैक्टिस करने में, अमल करने में सबसे मुश्किल। याद करनी आसान, तर्जुमा देखना आसान, ठीक है, लेकिन इंसान इनके ऊपर अमल करे तो एक परफेक्ट कम्युनिटी बन जाए, एक परफेक्ट खानदान बन जाए। तो अब हम आदाब देखने वाले हैं, वो आदाब, वो मैनर्स जो के घरों में भी अप्लाई होते हैं, कम्युनिटी में भी अप्लाई होते हैं, खानदानों में भी अप्लाई होते हैं। और कैसी सोसाइटी होनी चाहिए एक मुस्लिम सोसाइटी, उसकी एक झलक इनमें नज़र आती है। हमने अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ किस तरह से रहना है, ये हमें आदाब शायद किसी स्कूल ने, किसी यूनिवर्सिटी ने कभी नहीं सिखाए होंगे, जो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में सिखा दी। और अल्लाह ताला ही की बात को हम जब सुनते हैं तो दिल पे एक डिफरेंट तरह से असर होता है, क्योंकि ये आसमान से बातें आ रही हैं। ये बातें कोई किसी क्रीचर ने ऐसे नहीं बताई हैं हमें, ये अल्लाह ताला की बात है। जब अल्लाह ताला कोई बात फरमा दे तो उसका हुक्म होता है, फिर वो ऐसी बात नहीं होती कि इंसान चाहे तो करे चाहे तो ना करे। कुछ चीज़ों के अंदर ऑप्शनल होता है ना, आपने नफल पढ़े नहीं पढ़े कोई मसला नहीं, आपने नफली रोज़ा रखा नहीं रखा कोई मसला नहीं, आप नफली हज के लिए या उम्रों के लिए गए नहीं गए कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुक्मन बता दी गई कि ये हुक्म है अल्लाह ताला का, तो उसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम ये कहें कि नहीं हम नहीं मानते, या ये तो हम कर ही नहीं सकते, या तो हो ही नहीं सकता। और हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं इस सूरत के अपनी आवाज़ें हम ऊंची ना करें, इनसे आगे ना बढ़ें, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ें और अल्लाह के नबी के ऊपर अपनी आवाज़ को ना करें। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो उससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। इस सूरत का नाम बाज़ उलमा ने ये भी फरमाया कि इसका नाम सूरतुल अदब है, अदब यानी मैनर्स, ये मैनर्स सिखाती है। और ये सूरत यहाँ से लेके सूरह हुजरात से लेके अब सूरह नबा तक जितनी सूरतें आएंगी इनको कहते हैं तवाल अल मुफस्सिल। तवाल मुफस्सिल यानी लंबी हैं, मुफस्सिल हैं, और फिर आगे और साथ मुफस्सिल आ जाएंगी, दरमियानी है वो, आबासा से सूरह शम्स तक, और फिर उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट जो हैं वो दुहा से अन्नास तक। तो जो ये तवाल मुफसिल हैं इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में पढ़ा करते थे, फिर उसके बाद जो आबासे से शम्स तक है इनको जुहर और इशा में पढ़ा करते थे, और जो कसार मुफसिल हैं उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सूरह दुहा से नास तक मगरिब में पढ़ा करते थे। तो ये थोड़ी सी इनकी तफसील है। और ये वाली कौन सी सूरतें हैं जिनको कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, फजर में, क्योंकि फजर में लंबी होती है ना जरा किरात। अब देखते हैं आज का सबक, अगर इससे पहले इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हमारे अमल में ले आ, या अल्लाह ताला अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे और शैतान को हमारे इस रास्ते में रुकावट ना बनने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो ईमान का दावा करते हो, जो कहते हो हम ईमान वाले हैं, ला यसखर, ना तुम तमस्खुर उड़ाओ। यसखर कहते हैं, उर्दू में भी हम बोलते हैं ये लफ्ज, सखरिया कहते हैं मजाक उड़ाने को, किसी की तहकीर करना, किसी को जलील करना, तौहीन करना किसी चीज, किसी की मजाक उड़ा के, यानी मजाक में किसी को जलील करके रख दिया, मजाक मजाक में किसी की इज्जत उतार के रख दी, मजाक मजाक में किसी को यानी छोटा कर दी, तौहीन उसकी कर दी, इंसल्ट कर दी। ठीक है, तो इसको कहते हैं यानी तमस्खुर उड़ाना। कौन ना करे कौमुन, एक कौम, मिन कौमिन, एक कौम का एक ग्रोह दूसरे ग्रोह का। अब ग्रोह से मुराद, वैसे अगर कहा जाए तो उसके अंदर मर्द और औरतें सब शामिल होते हैं, लेकिन यहां पर जो कि औरतों का जिक्र अलग से आ गया तो खास मर्दों की बात हो गई, क्योंकि आगे निसा का जिक्र अलग से आ गया। और दूसरे ये कि एक ताकीद करने के लिए भी दोबारा औरतों को ताकीद की गई। तो ना तमस्कुर उड़ाए एक कौम दूसरी कौम का, आसा हो सकता है अन यकूनू के वो हों खैरम में हों बेहतर उनसे, वला निसा उन और ना औरतें, मिन निसा इन औरतों का, आसा हो सकता है अन यकुन्ना के वो औरतें हों खैरम में हों बेहतर उनसे। अब ये 11 नंबर आयत के अंदर वो बातें हैं जो आमने सामने की जाती हैं, और 12 नंबर आयत में वो बातें हैं जो पीठ पीछे की जाती हैं ज्यादातर। तो जब आमने सामने है किसी के, तो उसकी तहकीर करना, उसको मजाक ऐसे उड़ाना कि उसको जलील करके रख देना, इस चीज से मना किया जा रहा है कि किसी की बेइज्जती कर दें आप हंसते हंसते ही, बस हंसी हंसी के अंदर, जिसको बाद में हम कह देते हैं ना, आई वॉज जस्ट जोकिंग, बस तुमने सीरियस ही ले लिया, इसको ऐसे हम कह देते हैं, क्योंकि दूसरा जब बुरा मानता हुआ नजर आता है तो इसको इस तरह से कह दिया जाता है। उस जमाने में तो हजरत अम्मार, हजरत खब्बाब, बिलाल, सुहेब, सलमान फारसी, इन पे चूंकि फकर के, अफलास के, और ये वैसे भी माशरे के अंदर यानी एक ऐसा तबका देखा जाता था जो गुलामों का और इस तरह था, तो इनकी ऐसे तहकीर की जाती थी मजाक उड़ा के। और अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमा दी। इसी तरह जब इकरमा बिन अबी जहल फतह मक्का के बाद हिजरत करके मदीना आए, तो वो अंसार की जिस मजलिस से भी गुजरते थे लोग कहते थे ये अबू जहल का बेटा है। जाहिर है वो तो एक हकीकत तो थी, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने शिकायत की तो आपने फरमाया मुर्दों को बुरा कह के जिंदों को अजियत ना पहुंचाओ। यानी किसी की भी कोई बात ये नहीं कि उसके अंदर नहीं है, हो सकता है उसके अंदर वो, जैसे यहाँ पे वाकई वो अबू जहल के बेटे तो थे, लेकिन तहकीर के अंदाज में किसी को बेइज्जत करना, हालांकि अबू जहल की बात हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते थे क्या इसके अंदर क्या बात हुई, वो जाहिर है तुम उसके बेटे ही हो, लेकिन फरमाया नहीं, उनको अजियत ना पहुंचाओ इस तरह का मजाक उड़ा के। और जैसे ये जुबान से होता है, इस तरह हाथ पैर से भी होता है, इशारों से भी होता है, किसी अमल से भी हो सकता है। तो कोई कौम किसी कौम का बिना मजाक उड़ाए, और मजाक कब उड़ाया जाता है, जब कोई इंसान खुद को बड़ी चीज समझता है और दूसरे को जलील समझता है, या कुछ भी नहीं समझता कि ये तो मेरे से घटिया ही है, मेरे से कम है, इस बुनियाद पे इंसान जुबान से ऐसी बातें निकालता है कि जिसमें दूसरे का मजाक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक फरमाया था, मजाक नहीं करते थे लोगों का, कि लोगों को आए और तुम क्या आ गए हैं, ये इस तरह बड़े अपने आप को समझते हैं, ये देख लो ये आ गए, इवन मुनाफिकीन ये आ गए जो के बहाने करते थे, ये आ गए जो के ऐसे करते थे, इस तरह करके कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ऐसे लोगों तक कभी मजाक नहीं हो। यहाँ किसी काफिर का होता कि ये देखो वो आ गया जो इस तरह से पहले ये कहा करता था, अब देखो बड़ा बन के बैठ गया। कुछ ऐसी बात कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से हम नहीं देखते कि किसी ऐसे बंदे के बारे में ऐसी कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फरमाई हो। यहाँ पे बता दिया गया कि ये ऐसे जोक्स, ऐसी बातें करना कतन भी जायज नहीं है, अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। औरतों को अलग से किसलिए कहा गया, औरतें औरतों की मजलिस में बैठे तो वो भी ना करें। अब देखिए ना, ऐसी कोई बात कह देना कि दूसरे को बुरा लगे और दूसरा अपनी बेइज्जती महसूस करे, और ये इतना ज्यादा कॉमन है कि हमारा कल्चर बन चुका है ऐसी बातें करना, हमारा कल्चर बन चुका है। ये देखें ना आप, के आप स्कूलों कॉलेजों में देखें जो प्रैंक्स होते हैं उसमें क्या होता है, इस तरह जो फेयरवेल पार्टीज की जाती हैं उसमें टीचर्स की नकलें उतारना, उनके मजाक करना, और इस तरह जो प्रैंक्स किए जाते हैं वो देखो, कोई भी नया बेचारा आया उसको किस तरह से सताया जाता है और उसको किस तरह जलील कर दिया जाता है। इसी तरह आप ये देख लें, जो हमारा कॉमेडी कल्चर है जो स्टेज का है, उसमें तो थ्रू आउट यही बातें होती हैं, तू क्या गधे के मुंह वाला, तू क्या फलाने वाला, वो फला मोटे मोटापे के ऊपर, किसी का किसी की रंगत पे, किसी के कद काठ पे, किसी की और शक्ल पे। हालांकि हम देखें तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला की बनाई हुई है, और उनके अंदर कोई ऐसी बातें करके उनका मजाक करना, अल्लाह ताला की तखलीक का मजाक करना। काफरों के बारे में सूरह मुतफिफीन में आता है ना, वइदा अनक़लबू इला अहलिहिम अनक़लबू फकीहीन, जब वो अपने घर वालों में जाते थे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे मुसलमानों का। तो ये तो उनका तरीका है, और ये तकबर की निशानी है कि एक इंसान दूसरे को हकीर समझ रहा है तभी तो उसका मजाक कर रहा है। और हमें नहीं पता, यहाँ पे बताया गया कौन जिसका हम मजाक कर रहे हो वो हमसे बहुत बेहतर हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने ही लोगों के बाल बिखरे हुए, वो बार आलूद होते हैं, उनके पास सिर्फ दो चादरें होती हैं और उनको कोई पनाह देने वाला नहीं होता। एक और जगह पे आता है कि उनको कोई इनवाइट भी नहीं करता, अगर वो कहीं से गैर हाजिर हो तो कोई उनको पूछता भी नहीं है कि ये नहीं आए, लेकिन वो अल्लाह के नजदीक इतने काबिले इत्तराम और इतने बड़े रुतबे वाले हैं कि अगर वो कसम खा ले ना किसी काम पे तो अल्लाह ताला उनकी कसम को सच कर देता है। सुभान अल्लाह। अब लोगों के नजदीक क्या बिखरे बालों वाला, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो क्या हो हम क्या जाने। किसी औरत का कोई औरत मजाक उड़ा रही है तो उसको क्या पता ये कितनी सब्र करने वाली है, या ये कितनी अल्लाह के रास्ते में देने वाली है, ये कितनी अल्लाह ताला को महबूब है, कितनी तहज्जुद गुजार है, कितनी इबादत गुजार है, हम नहीं जानते। लेकिन हम उसकी जाहिरी कोई भी चीज देख के उसके ऊपर उसका मजाक करने लगते। अल्लाह हु अकबर, इसकी इतनी बड़ी सजा है। शेबल ईमान में ये हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाते थे आखिरत में उनके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और उनसे कहा जाएगा आओ आओ, वो अपने गम और परेशानी के बावजूद भागे हुए जाएंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर दूसरा दरवाजा खोला जाएगा, उनसे कहा जाएगा आओ आओ, वो अपने गम और परेशानी के बावजूद वहां भागे जाएंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तो वो भी दरवाजा बंद कर दीजिएगा। इसी तरह होता रहेगा हत्ता कि उनमें से किसी एक के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उनसे कहा जाएगा आओ आओ, वो तो मायूस होके जा ही नहीं पाएंगे। अल्लाह हू अकबर। यानी अब तुम मजाक करते थे ना, अब ये तुमसे मजाक किया जाएगा, तुम लोगों की इज्जतों के साथ खेलते थे दुनिया में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसको जलील करता है, ना उसे झूठ बोलता है, ना उसे हकीर समझता है। हकीर समझते ही हैं तो मजाक करते हैं ना, और उसको जलील कर रहे थे। हम देख लें कितनी मजलिसों में ये होता है, फलां का रिकॉर्ड लगाना है, उसका आज बड़ा रिकॉर्ड लगा है जी, और हम खुद भी हंसते हैं कि उसका आज फलाने ने बहुत रिकॉर्ड लगाया, फिर अगली दफा दूसरे की शामत आ जाती है। जिसका जो समझता है ना आज दूसरे के ऊपर हंस रहा है, तो कल को उसकी भी शामत आ जानी, कल उसका भी रिकॉर्ड लगाया जाएगा। और दीन में कोई आगे बढ़ने लगे उसका तो मजाक उड़ाना और भी बुरी बात है, क्योंकि उसको रोक रहे हैं। अब मसलन कोई हिजाब करने लगी, बाबी बीबी हाजन बन गई है, मुल्लानी बन गई है, कोई पढ़ना शुरू हो गया दीन को, उसका मजाक उड़ाना, डिफरेंट अलकाबात उनको देना, आगे उनकी भी बात आ रही, कोई गिर जाए उसके ऊपर हंसना। बल्कि इसके बारे में तो हदीस आती है कि एक दफा कुछ लड़के थे वो हंस रहे थे, आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि आप लोग क्यों हंस रहे, तो उन्होंने कहा फलां फलां आदमी जो है ना वो खेमे की रस्सी से गिर पड़ा अटक के। तो आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया मत हंसो, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया जिस मुसलमान को कोई कांटा या कांटे से बढ़कर चीज लग जाए तो उसके बदले तो उसका एक दर्जा लिख दिया जाता है और उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है, यानी उसके तो गुनाह बख्शे गए, और तुम हंस के उसको जलील करके और इस आयत के खिलाफ चल रहे हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चल रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो गुनाह हो गया। इस तरह आप देखें बच्चे स्कूलों के अंदर किस तरह से दूसरे बच्चों का मजाक उड़ा उड़ा के उनका जीना हराम कर देते हैं, जिसको हम बुलिंग कहते हैं, बुली करते हैं, और कई बच्चे इस बुली की वजह से बाज दफा खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं या फिर जहनी मरीज बन जाते हैं, उनकी बहुत लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, वो किसी को बता नहीं पाते। तो ये जब हम अपनी मजलिसों में करते हैं, बच्चों को भी यही सिखा रहे होते हैं, वो सेंसिटिव नहीं होते दूसरी की तरफ, फिर वो भी यही हरकतें करने लगते हैं। और आप देख लें मर्दों की मजलिस देख लें या औरतों की देख लें, उसके अंदर क्या किया जाता है, इसी तरह दूसरे के रिकॉर्ड लगाए जाते हैं, कोई लंबू है तू ठिगना है तू चश्माटू है तू फलाना है, कोई गंजा है कोई ये है, ऐसी बातें की जाती हैं। या किसी की पुरानी बात को याद करके उसके ऊपर हंसना और उसको छोड़ना ही नहीं, बार बार बयान करना ताकि उसको जलील करें, हम और जलील करें। अब वो पुरानी हो गई बात, इसको बार बार लाके याद है फलाने वक्त में इसने ऐसे किया था, जब वो आए तो उसको इस तरह से जलील किया जाए, इसी तरह किसी का गुनाह याद करा करा के लोगों को उसके ऊपर हंसाया जाए, ये तो वो था जो ये करता है हमें इसका, ये सब हंसने लगे। तो एक बंदा ये शोशा छोड़ता है और बाकी सारे उसकी हाँ में हाँ मिला के हंसने लगते हैं। अल्लाह अकबर, वो तो अपने गुनाह बख्शवा रहा है और ये अपने ऊपर गुनाह चढ़ा रहे हैं, और ये हम एंटरटेनमेंट समझते हैं, इसको हम समझते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी की पैरोडी करना। अब तो ऐसी महफिलें होती हैं, ऐसी बाकायदा ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें काम ही ये होता है, उसकी नकल उतार रहे हैं उसकी नकल उतार रहे हैं, कभी किसी सियासतदान की, कभी किसी एयर होस्टेस की, कभी किसी टीचर की, कभी किसी की, यानी किसी को की भी इज्जत को तार तार करना हमारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, लोग टिकट लेके जाते हैं, क्या किसी के ऊपर हंसना ही हमारे लिए एंटरटेनमेंट रह गई है, फिर ये कल्चर बन जाता है, जब ही तो बच्चे भी यही काम करने लगते हैं कि शायद यही भी अच्छा काम होगा, वो यही तो देखते हैं, उनको भी समझाना चाहिए। और ये आयात तो हमें अपने घरों में बहुत शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस बच्चे की कौन सी बात से कोई और बच्चा अजियत पाके ये ना अपनी जान ही ले ले। फिर सलफ सालेहीन इस चीज से इतना डरते थे, अमर बिन शराहबील ने फरमाया कि अगर मैं किसी शख्स को बकरी के थनों से मुंह लगा के दूध पीते देखूं और उस पर मुझे हंसी आ जाए तो मुझे डर है कि कहीं मैं भी ऐसा ना हो जाऊं, नहीं मुझे ये डर है अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा ना बना दे कहीं, और मैं किसी के मसलन मिसाल के तौर पे किसी को कुर दिमागी से या कोई बेवकूफ है उसको बेवकूफ समझ के, या किसी को तो कोई समझ ही नहीं है उसको पागल समझ के इस तरह से मैं उसका मजाक उड़ाऊं, कहीं अल्लाह मुझे ऐसा ना बना दे। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अगर मैं किसी कुत्ते का भी मजाक उड़ाऊं तो मुझे डर है कि मैं खुद कुत्ता ना बन जाऊं, इतना वो डरते थे। इसी तरह हम ऐसे लोगों का जो कि
मेंटली सही नहीं होते, डिसेबल्ड होते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर हमें डर भी नहीं लगता कि अगर अल्लाह ताला ये हमारे अंदर पैदा कर दे तो हमारा क्या बनेगा। कभी किसी के कपड़ों का मजाक, कभी किसी की शक्लो सूरत का मजाक, कभी किसी के पुराने गुनाह को याद करा करा के उसका मजाक, कभी किसी की बेवकूफी के पर जो उसने बेवकूफी में को हरकत कर दी होगी उसको ले पकड़ के फिर उसका मजाक। और यहाँ पे कहा गया देखिए दोनों जगह कौमुन, देखिए ये भी नकेरा है, और निसा उन नकेरा है, ना औरतें औरतों का ना मर्द मर्दों का। यानी नकेरा से क्या होता है कि ये आम है, कोई भी औरत हो, कोई खास औरत की बात नहीं की जा रही, कोई भी औरत किसी औरत का नहीं मजाक उड़ाए, किसी भी औरत का ना मजाक बनाए, चाहे कोई अपने आप को समझे कि मैं बहुत नेक हूं, अब मैं तो किसी का भी मजाक उड़ा सकती हूँ, या कोई उस्ताद है तो वो समझे कि भाई मैं तो उस्ताद के कैलिबर पे हूं, तो मुझे मैं अब मेरा फ्री हैंड है, मैं किसी भी स्टूडेंट को पकड़ के उसकी शामत ले आऊं। बाज दफा कोई टीचर्स भी ऐसी हरकतें करते हैं कि वो किसी एक बच्चे को पकड़ लेते हैं बस उसका मजाक, अब वो सारी क्लास हंस रही है, उस बच्चे की क्या इज्जत रह जाएगी और उसके दिल के अंदर क्या गुजर रही होगी और उसके क्या कॉन्फिडेंस रहेगा। इस तरह हम बाज दफा माएं भी करती हैं, वो अपने ही बच्चों का मजाक उड़ाने लगती हैं, और हमारे लिए कितना आसान है आखिर में कह देना कि ओ मैं तो बस मजाक कर रही थी, ताकि दूसरा नाराज भी ना हो, बेचारा मरता क्या ना करता क्या करे फिर, तुमने तो सीरियस ही ले लिया, नहीं उसको बुरा मानने भी नहीं देते। तो सबसे पहले तो हम इस चीज के ऊपर अल्लाह ताला से तौबा करें कि अल्लाह ताला हमने जाने या अनजाने में कभी भी ऐसा किया है, अल्लाह ताला तू हमें माफ कर दे। और किसी का भी नहीं, चाहे कोई कितना ही, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे मिसाल बताई है कि इकरमा अबू जहल के बेटे ही थे, तो ये नहीं थे कि उन्होंने गलत वो कहें कि हमने कौन सा कोई गलत बात की, लेकिन बात ये है कि अजियत पहुंचाई उनका मजाक करके, उनको ऐसी बात कह के जिससे उनकी हकारत हो या उनको जलील किया जाए, नीचा किया जाए, बेइज्जत किया जाए, जो किसी को बैड फील हो। तो मैंने जैसे आपको बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक फरमाया था, मजाक क्या कि आपने वो फरमाया उस औरत को, बूढ़ी औरत थी, कि बूढ़ी तो नहीं जन्नत में जाएंगी, तो वो परेशान हो गए, आपने फरमाया कि नहीं जवान करके अल्लाह ताला जन्नत में भेजेंगे, वो गुठलियां थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अली ने कर दी, और फरमाया कि देखो इन्होंने तो इतनी ज्यादा खा ली खजूर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इसको देखो इसने गुठलियों समेत ही खा ली। तो ऐसे करके एक मजाक का, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप कभी कोई बात के ऊपर हंसे बोले नहीं, खुश नहीं हो, लेकिन किसी को जलील करके नहीं, ये ज़हन में हमें रखना चाहिए। फिर वला तलमीजू अनफुसकुम, तलमीजू का लफ्ज जो है लम्ज कहते हैं दूसरे के ऐब तलाश करना, किसी को टारगेट करना कि जो है ना मैं कोई तलाश करूं, कुछ ढूंढूं इसके लिए कि जो जिससे मैं इसको, अगेन वही बात कि किसी को जलील करने के लिए जाहिर है या किसी को बेइज्जत करने के लिए और किसी को सुनाने के लिए, ताना देने के लिए, फपकियां कसने के लिए, चाहे अब खुल्लम खुल्ला किया जाए या फिर बातों बातों में ऐसी लगा दी जाए बातें, बात लगा देना हम इसको बोलते हैं ना, उसने ऐसी बात लगाई, आज तो भिगो भिगो के मारा है, यानी डायरेक्ट भी नहीं कहा लेकिन ऐसे कहा कि बस दूसरा बेइज्जत होके रह जाए। अब यहां पे कहा वला तलमीजू अनफुसको, अपने आप को ना ऐब लगाओ, अपने आप को तो कोई भी नहीं ऐब लगाता, असल में जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान पे ऐब लगाएगा और उसको ताना देगा तो ये ऐसे ही है कि जैसे उसने अपने आप पे ऐब लगाया।
जैसे किसी के माँ बाप को गाली देना अपने माँ बाप को गाली देने का बायस बनता है ना, तो आपने फरमाया कोई अपने माँ बाप को गाली ना दे। तो सहाबी ने पूछा कि अपने माँ बाप को कौन गाली देता है, आपने फरमाया जब तुम दूसरे के माँ बाप को दोगे तो जाहिर है वो भी तुम्हारे माँ बाप को दे। तो यही बात है कि अपने आप को ऐब ना लगाओ, यानी किसी और के ऊपर ऐब ना लगाओ, किसी और को जिसको कहते हैं गंदी मक्खी ना बनो कि किसी के ऐब टटोलने लगो। अच्छा अब ये देखें कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास, अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह हमें उनमें ना शामिल करना या रब, कि उनके पास लोग जाते हुए डरते हैं। क्यों? इनकी मजलिस में जाएंगे तो हमारी इज्जत ही खराब करेंगे, यहाँ तो कोई ऐब निकालेंगे, तुम ऐसे क्यों, तुम ये क्यों, तुमने ये क्यों पहना, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम, या मजाक उड़ा के और जलील कर देंगे, ये क्या बन गई हो तुम, तुमने तो इतना वेट पुट ऑन कर लिया, इतनी मोटी लग रही हो तुम, ऐसे हो। इस तरह की बातें करना ये भी दूसरे को जलील ही करना है, कि वो लोग फिर डरते हैं कि हम फलां के घर जाएंगे तो बस अपनी इज्जत बचा के आ जाएं तो बड़ी बात है। मैंने बाज लोगों को सुना है वो अपने रिश्तेदारों से डरते हैं कि वो उनके घर चले गए तो बस इसी फिक्र में रहते हैं कि इज्जत बच के आ जाए। क्यों हम ऐसे करते हैं? अब वो अपने बड़ों से मिलने गए हैं, कोई चचा मामू खाला पुप्पी होंगे, और वो बड़े समझते हैं कि हम तो जो मर्जी कहें किसी को, हम जो मर्जी कह दें, जिस तरह मर्जी इनको जलील कर दें, बेइज्जत कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बड़े हैं। और कभी कभी अनजाने में कर रहे होते हैं, सोच के नहीं कर रहे होते, लेकिन अनजाने में ही वो इतनी बड़ी बात कर जाते हैं कि जिससे दूसरा कितना हर्ट हो जाता है। तो ना ऐब लगाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें सबसे बुरे कौन लोग हैं, जो चुगली करते हैं, लोगों के दरमियान बिगाड़ डालते हैं, और जो लोगों के ऐब चुनते हैं, ऐब चुनना, दूसरों की खामियां चुनना, मजा आई? ये कितने बुरे लोग हैं। अब ये ना हो कि हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं तो बड़ी नेक हूं और अल्लाह के हाँ इतने बुरे लोगों में शामिल हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जिससे खैर की उम्मीद हो और उसके शर से अमन हो। समझ आई बात? यानी जिससे खैर की उम्मीद हो कि लोग आपके पास आए तो उनको ये ना परेशानी हो कि भाई पता नहीं अब ये मेरी कौन सी बात का मजाक उड़ा ले, या कौन से मेरी बात देख के उसके बाद मेरे खिलाफ बातें बनाए, या कौन सी बात मुझे लगा दे, मुझे सुना दे, मेरी बेइज्जती कर दे, मुझे ताना दे दे, या मेरे पीठ पीछे बातें बनाए। तभी तो ये कल्चर पैदा हुआ ना। आप ये नहीं सोचते ये कल्चर क्यों आ जाए, जो माएं बच्चों को कहती हैं कि हाँ ऐसे ना करो, आंटी फिर क्या कहेंगी, लोग बातें बनाएंगे, क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि इस माशरे के अंदर, जिस माशरे में कोई किसी का खैर ख्वाह ना हो, बल्कि हर एक किसी के ऐब ही देख के उनको उछालने वाला हो, वहां पे फिर यही होगा। सोच ले हमारा माशरा कैसा हो चुका है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और तुम्हें सबसे शरीर लोग हैं। पहले तो बताया कि जो खैर, जो सबसे बेहतरीन लोग हैं ना, जिनसे खैर की उम्मीद हो और उसके शर से अमन हो, और सबसे तुम्हें बदतरीन लोग वो हैं जिसके जिससे खैर की तवक्को ही ना हो और उसके शर से अमन ही ना हो, लोग खुद को सेफ ना महसूस करें। एक वो चोर होता है जो किसी की चोरी करता है उसके माल की, और एक चोर वो है जो इज्जतों की चोरी करते हैं, लोगों की इज्जतों पे डाके डालते हैं, लोगों को बेइज्जत करके रख देते हैं, और वो अपने आप को कोई चोर ही नहीं समझते और फिर भी सबसे नेक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हर तरह के लोग आते थे, ये ना समझेंगे सारे अबू बकर सिद्दीक और उमर और अली और उस्मान थे, सब ऐसे तो नहीं थे, कमजोर वाले भी मुसलमान थे, मुनाफिक भी थे। लेकिन हम कितनी दफा देखते हैं कि आपकी मजलिस में आए हो तो आप उनके ऐब, तुम लोग तो नमाजें नहीं सही पढ़ते, तुम लोग तो ऐसे नहीं करते, तुम लोग तो ये हो, तुम लोग तो झूठे हो, तुम तो लोग, तुमसे तो कभी मशवरा ही नहीं करना चाहिए, देखो तुम्हारे मशवरे का क्या अंजाम हुआ, देखो ऐसे हो गया वैसे हो, हम कभी देखते ही नहीं कि बुरा भला कह रहे हो, मलामतें कर रहे हो, ऐब निकाल रहे हो। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे जो अखलाक के आला पाए पे थे,
आपके सामने तो सारे ही ऐबदार थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफेक्ट थे। अगर वो किसी को कहने लगते तो चलो उनको जेब दे भी सकता था कि वो परफेक्ट थे, हम में से तो कोई भी परफेक्ट नहीं, फिर भी हम दूसरों के ऐबों के पीछे पड़े रहते हैं। किसी का ऐब नजर आ जाए, यही लफ्ज है ना, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, हुमज़ा और लुमज़ा वालों के लिए वैल है जो किसी के ऐब तलाश करते हैं। अल्लाह ताला हमें इसे माफ करे, या अल्लाह हमने जो भी ऐसे काम किए उस पर हमें माफ फरमा देना। उस किसी का कोई भी ऐप पकड़ के उसके ऊपर उसको जता देना या दूसरों को बताना, तो एक दूसरे का ऐबों के पीछे ना पड़े। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, जब आप किसी के ऐब के पीछे पड़ जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम एक दूसरे से कतअ ताल्लुक ना करो, ना ही एक दूसरे से रूगरदानी करो और ना एक दूसरे के ऐब तलाश करो। ये ना हो कि वो ऐब कल को हमारे अंदर भी आ जाए, जिसका हम ताना दूसरे को देते हैं उसका बदला ये होता है कि वो फिर इंसान उसी चीज को अपने अंदर देखता है, फिर उसके अंदर आ जाती है वही चीज, वही खामी। तो दूसरे को तानो तशना करना, और ऐब किसी चीज में भी लगाया जा सकता है, यानी किसी के अखलाक में भी लगाया जा सकता है, देखो ये तो कंजूस है, देखो ये तो लालची है, देखो फलां तो झूठी है, देखो ये तो बड़ा बड़ी टो लगाने वाली है, देखो फलां तो ऐसी है, और इसी तरह किसी के दीन में लगाया जा सकता है, ये तो बड़े बेनमाजी है, नमाज तो पढ़ते इसको कभी देखा ही नहीं, पता नहीं पढ़ती भी है कि नहीं पढ़ती, हमारे सामने तो पढ़ लेती है। इसी तरह और भी चीजों में किसी के किरदार में लगाया जा सकता है, किसी अखलाक में लगाया जा सकता है। अनस रज़ी अल्लाह ने देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 सवाल रहे, मैं यही मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता सिवाय अम्बिया के, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सालों में उनको कभी नहीं ये फरमाया तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया। और बास घरों में तो लड़ाइयों की वजह ही ये बनती है, ऐब लगाना, बीवी तूने खाना नहीं सही बनाया, ये क्यों बना दिया, इसमें नमक ज्यादा क्यों, इसमें मिर्चे क्या। और अस्तग़फिरुल्लाह, बास लड़ाइयों की तो मैंने खुद स्टोरी सुनी है कि बात इतनी सी से शुरू हुई, सिर्फ खाने में ऐब लगाने से, और नौबत तलाक तक पहुंच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे, कभी खाने में ऐब नहीं निकालते थे, अगर पसंद होता था खा लेते थे, नहीं पसंद होता था छोड़ देते। अस्तग़फिरुल्लाह ही रब्बी, हम तो हर चीज में ही ऐब निकालने लगते हैं, बल्कि किसी के घर चले जाएं तो अब देखते हैं कि भाई कहाँ से ढूंढे कोई ऐसी चीज ऐब निकालने की, गंदी मक्खी बन चुके ना, कि भाई गंदी मक्खी गंदगी पे ही बैठती है ना, उसकी 10,000 खूबियां होंगी वो नहीं हमें नजर आती, लेकिन उसकी जो एक खामी होगी ना वो हमें जरूर नजर आती है, ये देखो ये इसके अंदर खामी है, फिर हम उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। खास तौर पे अगर हमारे पास कोई पावरफुल पोजीशन आ जाए, मसलन है कोई बड़ा है रिश्ते में, या कोई टीचर है, या कोई बड़े ओहदे पे है, या कोई मालदार ज्यादा है, तो फिर तो वो समझते हैं कि अब तो दूसरों के ऐब निकालना हमारा ही काम हो गया, बस ऐब चुनते रहेंगे। तो इवन मुर्दों के भी फरमाया कि ऐब ना निकालो, जो दुनिया से जा चुके हैं वो तो देख भी नहीं रहे बेचारे, सुन भी नहीं सकते, लेकिन उनके भी ऐब ना निकालो, किसी के अपने ससुराल में किसी के साथ नहीं बनती थी, अब वो फौत हो गए उनके ऐब निकालने बैठ गए, ये तो ऐसे हुआ करती थी, ये कहती थी वो कहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा साथी वफात पा जाए तो उसको छोड़ दो, उसके ऐब बयान ना करो, फरमाया मुर्दों को बुरा ना कहो, उनने जैसा अमल किया वैसा बदला पा लिया, सबसे बड़ा इसको सूद कहा गया है, सूद से तो हम बचते हैं ना, सबसे बड़ा सूद ये है कि इंसान नाहक किसी मुसलमान की इज्जत से खेले, चाहे गइबत करके, चाहे उसके सामने तानो तशने करके, चाहे उसके ऐब निकाल के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन तो लान तान करने वाला होता ही नहीं, फोहश गो होता ही नहीं, बेहुदा गो होता ही नहीं कि बेहुदा बातें करता रहे। मोहम्मद बिन अहमद के हालात जिंदगी में लिखा हुआ है कि वो अल्लाह ताला की किताब को हिफ्ज करने पे लगे रहते थे, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते थे, और इनसे किसी के बारे में जुबान दराजी नकल नहीं की गई, हालांकि उनका ताल्लुक हुक्मरान तबके के साथ था, हुक्मरान तबके से थे, फिर भी नहीं ये करते थे कि लोगों के आबों के पीछे पड़े रहे। और देखें, ये भी एक नफसियात होती है कि इंसान ना बस हर वक्त ऐबजुई करते रहना, हर वक्त एतराज करते रहना, हर वक्त चोट लगाते रहना दूसरे को, जेरे लब या इशारों से किसी को निशाना बनाते रहना, इससे किसी की इसलाह तो नहीं होती, ना हमारी कोई ख्वाहिश होती है इसलाह करने की, बस बातें करनी है ना, जैसे सिर्फ ये चाहते हैं कि दूसरों को नीचा किया जाए। और बाज दफा इसमें सिर्फ मकसद ये होता है ताकि मैं खुद ऊंची हो जाऊं, लोगों को देखा ना कि किसी को अच्छा समझ रहे हैं तो फिर फौरन उसकी कोई बुराई निकाल के और लोगों को बताया कि देखो इसके अंदर तो ये बुराई है, ताकि लोग उसकी तरफ ना जाए, ताना देना भी इसी में आ जाता है, ताने देना, ताने देने वाले अपने खुद ही दुश्मन होते हैं, क्योंकि उनको लोग फिर छोड़ जाते हैं, कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता, कोई उनको पसंद नहीं करता, जो ऐब निकालते हैं उनसे भी लोग दूर भाग जाते हैं, वो अकेले ही रह जाते हैं। बस हम कहते हैं ना, कोई पूछता नहीं, कोई ये नहीं, बस सारे ही ऐसे हैं, सब मतलब ही सब। हमें ये भी देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जुबान ऐसी है कि लोगों के ऐब टटोलती रहती है हर वक्त, इस वजह से कोई मेरे पास ही नहीं आना चाहता, या लान तान करने वाली है, या मेरी जुबान में ऐसी काट है कि लोगों को फप्तियां कसते रहे, मलामत करती रहती है, इल्जाम लगाती रहती है। तो खुद भी हमें अपने आप को देखना चाहिए। तो इंसान अगर इस आदत को अपना लेता है तो उसके अपने प्यारे भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करते, इवन अपने बच्चे भी मुतनफिर हो जाते हैं वालदैन से कि हर वक्त जब बैठो ये तुमने ऐसे नहीं तो तुम ये नहीं, तो तुम निकम्मे, तुम तो फलां, तुम ये, ऐब ही ऐब निकालते रहना। आ जाता ना कि ईसा अलैहि सलाम अपने हवारियों के साथ जा रहे थे तो एक मुर्दा बकरी का बच्चा था, तो उसके बारे में सबने बुरी बातें की, तो ऐसा ऐसा ऐसा, तो फरमाते हैं लेकिन इसके दांत तो देखो कितने खूबसूरत हैं, यानी वो मुर्दा था, सड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी, उसके ऐब ही ऐब थे, कनकटा था, क्या था, लेकिन उन्होंने उसके अंदर से भी एक अच्छी बात निकाल ली। तो सुभान अल्लाह, जो लोग अच्छे कैरेक्टर के होते हैं वो किसी की शख्सियत में से वो एक अच्छी बात निकाल लेते हैं, ये इसके अंदर अच्छाई है, उनको सारी बातें बाकी नजर ही नहीं आती, कि फर्क नजर नजर का है, कि हर एक इंसान में ना, दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर एक में खामियां भी हैं खूबियां भी हैं, किसी में खूबी ज्यादा खामी कम है, किसी में खामियां ज्यादा खूबी कम है, असल बात यह है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था, कि देखिए मुनाफिकीन में कितनी बड़ी खामी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी आप ये नहीं देखते कि वो मुनाफिकीन के ऐब निकालने बैठे, उनको सुना रहे हो तुम्हारे अंदर ये ऐप, तुम्हारे अंदर ये ऐप, बल्कि हम बच्चों की भी इसलाह करें तो ये हम सबको सीखना है, कुरान ही हमें सिखाता है, तो बेहतर ये है कि हम पॉजिटिव तरीके से करें, बजाय कि नेगेटिव, तुम निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होना, तुम तो सुस्त हो, तुम तो उठते ही नहीं, अगर हम ये कहें कि उठ के ये काम कर लो तो कितना अच्छा है, अगर ऐसा कर लो तो कितना तुम और भी अच्छे हो जाओगे, कि हर वक्त ऐब निकालना, बल्कि किसी बच्चे को देखने चले जाएंगे ये किस पे चला गया, आए हाय, अगर उसकी कोई नहीं पसंद आया तो आगे कहेंगे दादी पे गया होगा, ऐसी करके बातें करना, ऐब निकाल रहे हैं ना, एक न्यू बॉर्न में भी ऐब निकालने से नहीं हटते, फिर आप देखें किसी जगह पे किसी मजलिस में चले जाए, अब उसमें 10 चीजें अच्छी थी लेकिन वो बस खाना नहीं अच्छा था, खाना नहीं मजे का था, फलां चीज जो खाने में थी ना वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं, आया कैसा खाना दे दिया, वो जो बाकी कितना अच्छा आपने वक्त गुजारा, कितना अच्छा आपको मजा आया, कितनी दूसरे ने मेहनत की, उसकी तरफ कोई नजर नहीं। और फलाने के घर में आई, गर्मी इतनी थी वहां पे, अब वो सारी चीजों के अंदर हमें क्या नजर आया, वो एक ऐब नजर आया। वो था ऐब, लेकिन हमें हाईलाइट क्या चीज हमारे सामने होती, हमें ऐब ही क्यों नजर आते हैं, अच्छी चीजें क्यों नहीं नजर आती, समझा, हमारी नजर में खराबी है, हमारी नजर में खराबी है। किसी और के अंदर तो जाहिर है हमारे अपने अंदर भी खामियां हैं, कौन ये कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं। और अगर हमारे पीछे कोई पड़ जाए, हर वक्त हमारे बस ऐब ही तलाश करता रहे, मैंने आपको बताया ना, वैलुल्लि कुल्लि हुमाजा त्रिलुमाजा, तो वैल है वैल, लुमाजा के लिए भी वैल है। तो अब वैल क्या है, जहन्नुम की एक ऐसी वादी है जिसमें जहन्नमियों का खून और पीप होगा, तो ऐसे लोगों के लिए वैल है। और फिर वैल का दूसरा माना हलाकत है, बड़ी हलाकत, अस्तग़फिरुल्लाह ही रब्बी। तो इस तरह की अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह ही रब्बी। शैतान ना हमें ऐसी चीजों के अंदर दिखाता ज्यादा है और ज्यादा हाईलाइट कराता है, ज्यादा चीजें इस चीज की हमारे सामने लाता है और हम भी उस ट्रैप में आ जाते हैं। इसी तरह किसी की तलाक हो रही हो तो फिर देखें कितने ऐब, इतने ऐब के एक बहुत बड़ा बॉक्स खुल जाता है ऐबों का। इस तरह किसी की बच्ची देखने गए तो उसके ऐब निकालने शुरू हो जाएंगे। आप अगर नहीं वहां पे रिश्ता करना ना करें, लेकिन उसके ऐब तो ना बयान करें। और ये नहीं कि किसी में नहीं होगा ऐब, हो सकता है वो, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसी को हाईलाइट करते रहें और उसी को सुनाते रहें इस बात के ऊपर कि तेरे अंदर ये ऐब है। माएं बाज दफा इसी तरह कर करके अपने बच्चों को एहसास कमतरी के शिकार में मुबतला का शिकार कर देती हैं, उसमें मुबतला कर देती हैं, कि उनके ऐब ही तलाश करती रहती। और अपनी तरफ से हम क्या रहते हैं, हम बड़ी इसलाह कर रहे हैं, हम बच्चों को कहेंगे नहीं तो क्या, ये तरीका जरूरी तो नहीं कि यही तरीका हो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को क्यों नहीं इस तरह से कर दिया, मैंने तुम्हें काम के लिए भेजा था, तुम खेलने लग गए वहां पे, तुम बच्चों के साथ खेलने खड़े हो गए, तुम कैसे हो, ये हो वो, ऐसी कोई बात भी नहीं फरमाई। वला तनाबजू बिल अलकाब, और ना ही तुम अलकाब दो, यानी ऐसे नाम देना जो कि दूसरे को चिढ़ाने वाले हो या उसको पसंद ना हो या वो इसके अंदर अपनी बेइज्जती महसूस करता हो, ऐसे नाम से ना पुकारा जाए, किसी को ऐसे लकब ना दें जिसे वो अपनी तौहीन समझे। कोई मसलन है टॉल है तो उसको लंबू लंबू कहना शुरू कर दिए, कोई दुबली पतली है तो उसको सोटी सोटी कहना शुरू कर दिए, कोई बच्चे का रंग डार्क है तो कल्लू कहना शुरू कर दिए। तो ऐसे नाम देना जिनसे दूसरा बेचारा अपनी बेइज्जती फील करता हो, जिसको हम कहते हैं ना, बल्कि बाकायदा इसके लिए हमारे पास लफ्ज भी है, जैसे हमने कहते हैं ना, ये तो फलां की छेड़ है। छेड़ है क्या मतलब होता है इसका, यानी इस तरह हम उसको तंग करते हैं, तो बार बार वही चीजें कहना। जब आप मदीना तशरीफ लाए थे तो हर एक बंदे के वहां पे दो तीन नाम होते थे, तो आप सल्लम किसी नाम से पुकारते थे तो फिर साहबा बताते थे कि ये आपको इसको इस नाम से ना बुलाएं, इससे वो चिढ़ता है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ऐसे नाम ना रखो, किसी को प्यारे नाम दे, अगर वो नहीं दे सकते तो उसके असल नाम से उसको पुकार लें। देखिए अंबिया ने अपनी कौमों को जो काफिर होती थी, जिनके अंदर इतने इस तरह के गुनाह होते थे जो कुरान ने हाईलाइट किए हैं, इसके बावजूद उनको नहीं कहते थे ऐ काफिरो फासिको, ऐसे बदबख्तो, इस तरह की बात नहीं करी, या कौमी कह के पुकारा। तो किसी को इस तरह काफिर फलाना तो फासिक है वो तो ये है, या फिर जानवरों के नामों से, फलां तो ये जानवर है ये जानवर है, हमें पता है हम किन जानवरों की करते हैं
गधा किसी को कहते हैं, किसी को उल्लू कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो ये जानवरों के नामों से पुकारना, किसी को भी ऐसा नाम ना दो। और उसको वही नाम, मिसाल के तौर पे किसी का पता है कि ये ऐसा था लेकिन अब उसने तौबा कर ली है, तो अब उसको उसी नाम से पुकारते रहना, वो शराबी, वो जो ऐसा था। तो बाज दफा सियासतदानों के कोई बुरे नाम रख लेते हैं, वो जो जानी है, वो जो डाकू है, वो जो ये है, तो ये किसी तरह भी जायज नहीं। इस तरह किसी की जात बरादरी है, उसके ऊपर उसको हकारत के साथ उसके कोई नाम रख देना, ये मोची नाई होते हैं, ये तो फलाने होते हैं, आप देख लेना कि ये अलकाब देना, ये भी ऐब लगाने के लिए, और ये भी दूसरे की हंसी उड़ाने के लिए बाज दफा होता है। तो जिस चीज को वो नहीं पसंद करे वो नाम ना उसको दे जिससे वो चिढ़ता हो, बल्कि उस नाम से किसी को पुकारे जो उसको पसंद हो। अब कहाँ पे हम पुकार सकते हैं ऐसे अलकाब से जो एक्सेप्शनल सूरते हैं, मिसाल के तौर पे ऐसी जिसमें लोग उस चीज में मशहूर ही हूं, जैसे कि यहां पर कहा जाता है ब्लैक पीपल। तो वो ब्लैक पीपल ऐसा नहीं है, वो खुद भी उनकी पहचान बन गई है ना, ये उनकी पहचान है, वो इसको माइंड नहीं करते, वो भी खुद अपने आप को ब्लैक कहते हैं, तो उसमें कोई हकारत से नहीं कहा जा रहा। इसी तरह बाज लोगों के नाम ही ये होते हैं, वो उनकी पहचान होती है, तो उसमें वो उसको वैसा कहना, जैसे मुहदिसीन में बाज के नाम है, मसलन आरज, वैद अल आरज, तो वो इसके अंदर उनकी कोई तहकीर नहीं हो रही, वो यही उनका नाम ही है। या फिर किसी के लिए पहचान के लिए, मिसाल के तौर पे कहें कि बहुत सारे अहमद बैठे हैं, लेकिन आप कहें वो वाला जो डार्क रंग का है, वो वाला, वो जो जरा हैवी है, वो जो जरा लंबा है, इस तरह से करके सिर्फ पहचान के लिए, हकारत की वजह से नहीं कह रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे अपने सहाबा कराम को कितने प्यारे प्यारे नामों से पुकारा, ऐसा तनस कुया बुनैया, क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उनको सिद्दीक का जो लकब दिया, कितना प्यारा, सच्चे फारूक, ठीक है। तो कितने प्यारे प्यारे नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, किसी को ऐसे नाम नहीं दिए, ए मुनाफिक, ए काफिर, अल्लाह अकबर, बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, कितना बुरा नाम फिस्क में ईमान के बाद, यानी ये तो तुम्हें सूट ही नहीं करता कि तुम ऐसा करो कि तुम ईमान लेकर आए और उसके बाद तुम फिस्क का इर्तकाब करो। फिस्क क्या होता है? नाफरमानी, हद से निकल जाना, गुनाह की बात को कहते हैं फिस्क। कोई अच्छा लगता है कि तुम तो ईमान वाले हो और उसके बाद तुम फिस्क में नाम पैदा करो, कि यानी ये काम फासिकों वाले काम है, ये बताया गया, किसी को का मजाक उड़ाना इस तरह से, किसी की तहकीर करना, ऐब लगाना किसी को, उसको जलील करने के लिए, या किसी को डिफरेंट नामों से पुकारना ऐसे जो उसको पसंद ना हो, ये सब फासिकों के काम है। तो ये फिस्क है, तो तुम्हें कोई सूट करता है फिस्क करना? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता के हमें इस चीज से मना कर दिया कि तुम लोग फासिक ना बनो। अच्छा, एक और बात, जब हम किसी को बुरे अलकाब से पुकारते हैं, ऐब किसी का निकालते हैं, देखिए एक एक बुराई को ना चुन चुन के यहाँ से निकाला गया है ईमान वालों से, एक एक बुराई को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को उसके किसी गुनाह पे शर्मिंदा किया। ये तू तो ऐसे था ना, तू तो ये करता था, तू तो वो करता था, तो वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो भी ये गुनाह ना कर ले। ये कहा ना तू मिसाल के तौर पे, ये तो वो है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आज बड़ी नेक भाजन बन गई है, कल का तक तो ये थी, ये हमें तो पता है, हम तो जानते हैं इसको, ये फलां फलां चीज करती थी। तो तुम तो खुद ऐसी हो, तुम तो खुद चोरखोर थी, तुम तो खुद झूठी, तुम फ्रॉड, तुम फलां, उसके गुनाह पे उसको शर्मिंदा करना। तो ऐसा इंसान, यानी ये भी ऐब तलाश करना या दूसरे को बुरे अलकाबात देना, इसमें आ गया ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जबकि वो इसको छोड़ चुका, लेकिन ये फिर भी उसको इस बात को पे आर दिला रहा है, शर्मिंदा कर रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह ही रब्बी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये कितना बुरा काम है, फिस्क में नाम बनाना ईमान के बाद। वा मल्लम यतुब, और जो तौबा ना करे, फाउलाइक हुमुल ज़ालिमून, तो यही लोग जालिम हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो लोग जो अपने आप को कहें कि हम तो बड़े ईमान वाले हैं, हम तो नेक बड़े परहेजगार हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन वो अपने आप को समझते हैं कि हम अब हम चूंकि हम दीन की तरफ आ गए, अब हमारे पास खुला इख्तियार है, हम जिसको मर्जी बेइज्जत करें, हम जिसकी मर्जी इज्जत उतारें, हम जिसकी मर्जी बुरे बुरे नाम रख दें, हम इसका रिकॉर्ड लगाएं, हम इसको जलील करें, हम इसके ऐप तलाश करें, किसी के घर भी जा रहे हैं तो उनके ऐप तलाश करें कि किस तरह इनके कोई ऐप हमें मिल जाए सही, तो हम फिर जाके बाहर बयान करें। अल्लाहु अकबर। तो ऐसे लोग अगर तौबा नहीं करते, ऐसे लोग अगर तौबा नहीं करते, अल्लाह ताला ने फरमाया वो जालिम है, जालिम है वो। हमें क्या पता जिसके हमें ऐब, एक ऐब हमें तो एक ऐब पता चला है ना, हमें क्या पता कि उसके अंदर कितनी और सिफात हो, कितनी और अच्छाइयां। हमें क्या पता हम जिसको बुरे बुरे नाम दे के और उस पे हंस रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं, क्या पता वो अल्लाह के नजदीक कितना बड़े मकाम पे हो, हम नहीं जानते। किसकी नकलें हम उतार रहे हैं, हम नहीं जानते कि हम अल्लाह ताला के हाँ क्या है और वो क्या है। तौबा आप कैसे करेंगे? तौबा सबसे पहले तो इंसान इस चीज का इतराफ करे कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, कोई भी हम में से पाक नहीं है। और लोगों के लिए नहीं हमने करना कि लोग फिर कहेंगे कि आए अच्छा ये ऐसी है, ये कुरान पढ़ के ऐसी है, नहीं, सिर्फ ये कि ये अल्लाह ताला तेरी पकड़ से बचना है, तेरी सजाओं से बचने के लिए यार अब हमें जालिमों में ना शामिल करना, हमें भूल गया था या हमने अनजाने में कर दिया या जो जानबूझ के भी किए, तो फिर ये जुल्म तो जालिम के लिए, तो आपको पता है ना कयामत के दिन अंधेरे होंगे और जालिम के लिए तो बड़ी सजाएं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला जालिम को तो हिदायत भी नहीं देता, तो हम जालिमों में शामिल ना हो, उनकी सफ में ना शामिल हो जाएं, तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जस्टिफिकेशन देने, नहीं मैं क्या करती हूँ, लोग सारे ही आजकल ऐसे करते हैं, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है। हम सोचते ना ये जालिम तो वही होगा जो भाई लोगों को किसी को माल ना हक खा लेता है, जो कि ये करप्ट लोग हैं, ये जालिम हैं, जो लोगों पे जुल्म करते हैं ये जालिम है, ये भी जालिम है, इनको कुरान जालिम कहता है। तो इसलिए निदामत हो, शर्मिंदगी हो। फिर तीसरी बात ये कि गुनाह को छोड़ने का इरादा कर लेना, ये भी तौबा करने के लिए जरूरी है कि अब नहीं मैंने ये करना, मुस्तकबिल में उस काम को ना करने का अजम कर लेना कि मैं कभी भी नहीं करूंगी, ये अभी छोड़ दिया मैंने
और मैं आइंदा भी नहीं करूंगी। और अल्लाह ताला से दुआएं भी करें कि अल्लाह ताला तू हमें बचा के रखना, हम खुद नहीं बच सकते। और एक जगह बड़ी अच्छी चीज मैंने पढ़ी, इसमें था कि इंसान से कोई गुनाह हो जाए ना तो वो वुजू करे, वुजू भी गुनाहों को झाड़ता है ना, इंसान के चेहरे के गुनाह सारे, जिसके अंदर आंखें भी आ गई, जुबान भी आ गई, जो भी, तो इसी तरह हाथों के गुनाह माफ हो जाते हैं, पैरों के गुनाह माफ हो जाते हैं, दो और दो नफल पढ़ ले तो और भी अच्छी बात है। और किसी से माफी मांग सके तो जरूर मांग लें, जिसका मजाक उड़ाया, जिसका ऐब बयान किया, उसको जलील किया, जाहिर है उसके सामने ही किया था, तो उससे माफी मांगने में कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। या किसी को बुरे अलकाब से पुकारते थे तो आपसे कहें कि आपसे मैं नहीं करूंगा, मैंने ये पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो इससे भी मुश्किल बात, जो कि पीठ पीछे होती है, उसमें भी ईमान वालों को मुखातिब किया गया, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज्तनीबू, बचो, कसीरम मिनतन, बहुत ज्यादा गुमान करने से। बहुत ज्यादा गुमान करना, गुमान क्या होता है, इंसान किसी चीज को, कोई दलील नहीं है उसकी, या कोई आपको श्योरिटी नहीं है, तहकीक नहीं आपने की, लेकिन बस खुद ही जहन में सोच लेना और उसका यकीन कर लेना, ठीक है, नहीं उस चीज का इम्कान हो सकता था लेकिन यकीन हमने कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो, कि बहुत सारी बदगुमानी झूठी बातों से, मतलब झूठी बातें होती हैं, झूठ बात होती है ना, कि इंसान हमें क्या पता ये बात ऐसे है भी कि नहीं है, और गुमान करके बैठे। इसको जो मैं सिंपल अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो नेगेटिव थिंकिंग किसी के बारे में, बगैर दलील के किसी के बारे में भी नेगेटिव थिंकिंग, ये आई थी ना, इसका मकसद जरूर यही होगा। ये हाँ देखो, इनको रिश्ते से इनकार हो गया होगा ना, इसीलिए कह रहे हैं हमने तो शादी अभी करनी ही नहीं, आओ फलां को फलां जगह दाखला ही ना मिला, हाँ वहां दाखला नहीं मिला होगा ना, और खुद कह दिया कि हम वहां जाना नहीं चाहते। देखो वहां पे ये रिजेक्ट हो गए ना, इसीलिए कह दिया कि हमने तो खुद ही नहीं किया। यानी आप फेस वैल्यू पे जो कह रहा है उसके ऊपर उसका यकीन कर लें, खुद से गुमान ना बना के बैठ जाएं। इसने ये बात की है ना, जरूर इसके पीछे ये मकसद होगा। यानी बिटवीन द लाइंस रीड करना जो होता है, जिसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उसकी जरूरत नहीं है हमें। ये देखो इस तरह होगा ना तो इस तरह है, इसने ये कहा है ना तो इसका ये मतलब होगा, ये यहाँ आया ना तो इसने इसका ये माना होगा। किसी को किसी के घर जाते देख लिया, जरूर वहां पे रिश्ता करने चाहते हैं ना, इसलिए गुमान, खुद ही गुमान बना लिया। आप किसी के घर गए, आपने बेल की बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, आपने गुमान कर लिया, देखा दरवाजा नहीं खोला ना, अंदर थे, हो सकता है वो किसी और के साथ गए हो सकता है किसी और गाड़ी में चले गए, कोई और उनको राइड दे के ले गया, तो हो सकता है कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे उनको बेल की आवाज ना आए, तो मिलना नहीं ना चाहते इसीलिए। तो यानी नाजायज ही दूसरे के ऊपर बदगुमानी कर लेना, नेगेटिव थिंकिंग बना लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हराम कर दिया एक मुसलमान का खून और आबरू को दूसरे मुसलमान पर, और ये भी हराम किया कि मुसलमान दूसरे के बारे में बुरा गुमान करे। हराम से हम कितना बचते हैं ना, हराम खाने से कितनी दफा इंग्रेडिएंट पड़ते, हराम कमाई से हम बचते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो हराम है, इसको हम कोई गिनती में ही नहीं लाते। और ये भी फरमाया इन्ना बादज़न्नी इस्मुन, बाज गुमान, सारे नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ठीक है कर सकते हैं, बाज गुमान जो हैं वो गुनाह है, गुनाह है।
आपसे सलम ने फरमाया तुम गुमान करने से बचो, ये सबसे झूठी बात है, झूठी बात। तो ये झूठ हमने बना लिया, तो गुमान करने से बचने की तलकीन की गई कि गुमान ना करो। ये गुण हम यानी अब गुमान होता जहन में है, आपने कुछ बोला नहीं है, जहन में ही खुद ही बना लिया, लेकिन इसका मतलब जहन के ख्यालात भी बास गुनाह है। और जहन के अंदर क्या चल रहा है हमारे और हमने क्या सोचा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई इंसान नहीं जानता, हो सकता मुंह से बताएं भी ना। हाँ शैतान जरूर बुरा गुमान लाएगा, हम कहते हैं अब उसमें हमारा क्या कसूर है, देखे शैतान है, कोई वसवसा डालता है ना, लेकिन फिर उस गुमान के ऊपर चलते तो आगे हम ही है ना। अब एक वसवसा आया और आपने झटक दिया, नहीं, हो सकता है ये हो गया हो, 70 उसको कहा गया कि 70 एक्सक्यूजेस दो, 70 पॉजिटिव बातें उसके बारे में सोचो, तो 70 तो हम देते ही नहीं है। बदगुमानी पैदा ही ऐसे होती है ना, किसी चीज को हमने गलत रंग दे दिया। जैसे आप देख लें सलमान फारसी और उनके साथी, उनके पास कुछ खाने को नहीं था तो उन्होंने कहा कि हम उसामा बिन जैद के पास जाते हैं, उनसे जाके खाना लेते हैं, मांगते हैं उनसे, तो वो वहां पे गए तो वो ना दे सके, खाना खत्म हो गया होगा या कुछ बैतुल माल के चीजों का वो करते थे टेक केयर। तो जब ये लोग वापस लौटे तो सलमान फारसी की जो दोनों साथी थे उन्होंने कहा कि इनके पास खाना था लेकिन इन्होंने कंजूसी की है। था ये क्या बदगुमानी, ये जो बीज है ना इससे फिर स्प्राउट करती हैं बहुत सारी चीजें। जब ये एक बीज बोया जाता है ना, सबसे पहले स्टार्ट चीजें इससे होती हैं, फिर अगली जो हम बातें पढ़ने वाले हैं वो इससे फूटती हैं। पहले गुमान गलत होता है, और अफसोस से कहना पड़ता है हमारा कल्चर अब ये हो गया है कि कोई इंसान अनलेस प्रूवन इनोसेंट है हम उसको बुरा ही गुमान करते हैं। कोई हमसे कहे कि आप अपना जरा फोन दे देंगी, मैंने कहीं कॉल करनी है, आप कहेंगे जरूर इसने ना कोई गलत बात है इसके अंदर। और खास तौर पे मैंने ये मैं बैक होम गई जब पाकिस्तान में, तो इस चीज को बहुत देखा कि ट्रस्ट खत्म हो चुका है, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। वजह क्या है, यही बदगुमानियां बदगुमानियां कि नहीं ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, ये पैसे लेके भाग जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा होता रहा, शायद इस वजह से यही अब बैठ गया कि कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता, कोई किसी को मानने को तैयार ही नहीं कि ये सच बोल रहा है, अनलेस कोई प्रूव करे कि वो इनोसेंट है, वह उसको मुजरिम ही समझा जाता है, उसको गलतकार ही समझा जाता है। एक आदत बन चुकी है, कल्चर बन चुका है, कोई कोई ठीक बात भी बता रहा होगा ना, कोई अच्छी बात बता रहा होगा, जरूर इनको पैसे चाहिए ना, पैसों के पीछे करते हैं ये आजकल लोग, जरूर शोहरत चाहिए ना, जो इनको वोट चाहिए ना हमारे से, इसलिए कर रहे हैं। कल को ये इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, इसने इलेक्शन में खड़े होना है इसलिए ये सारे काम कर रहा है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं किसी के बारे में बुरा गुमान करना दिल की गीबत है, ये गीबत होती है जुबान से, एक दिल भी गीबत करता है। ये बदगुमानियां एक इंसान की आदत बन जाती है, इंसान फिर हमेशा हर एक के बारे में बदगुमानी करता है, स्टार्ट बदगुमानी से करता है, जैसे मैंने बताया कि अनलेस प्रूवन इनोसेंट तो वो गिल्टी ही है, और यहां पे क्या कहा जाता है, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, को हर एक इनोसेंट ही है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए, लेकिन हम उलट करते हैं, गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। ये कुछ ना कुछ इसका कुछ है, कोई बात है, अनलेस के प्रूव ही हो जाए कि नहीं है इनोसेंट। तो हमें तो ये कहा गया, हमारा तो ये कल्चर होना चाहिए था, हमारा तो उलट हो गया। घरों में देख लें बदगुमानियां, शौहर बीवी से बदगुमान है, ये तो नहीं कि ये ऐसे है अपने मेके में सारा दे देती है, ये ऐसे कर देती है, ये खर्च कर देती है, ये तो है ही कुंद जहन, ये तो है ही ऐसी। बीवी शोहर के बारे में बदगुमान, बाहर जाता है पता नहीं इतना तैयार होके जा रहा है, किधर जा रहा है ये पता नहीं क्या करता है, ये किसके पीछे है। और वो यही बदगुमानियां इंसान को फिर तजस्सुत तक पहुंचाती हैं, और फिर गइबतों तक पहुंचाती हैं, और फिर घर टूट जाते हैं। अब्दुल्ला फरमाते हैं जिसकी चोरी हो जाए वो बदगुमानी की वजह से चोर से भी ज्यादा गुनाहगार हो जाता है। क्या मतलब? यानी उसकी चोरी हो गई, अब वो हर एक के बारे में बदगुमान हो रहा है, इसने की होगी चोरी, जो उसके सामने आता है वो ये सोचता है यही होगा ना चोर, मुझे लगता है ये है चोर, ये है चोर। अब ये बदगुमानी चूंकि इट सेल्फ एक गुनाह है, तो वो बदगुमानी कर करके उस गुनाह को करता जा रहा है, वो चोर से भी ज्यादा गुनाहगार हो गया। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बदगुमानी भी उसी तरह हराम है जिस तरह बुरी बात कहना हराम है ना। एक हम कहते हैं मैं जुबान से तो कुछ भी नहीं कहा, जुबान से कुछ नहीं कहा लेकिन दिल में बदगुमानी है, वो भी हराम है। और ये बदगुमानियों से हमारे दिल कितने भरे हुए ये अल्लाह ताला ही जानता है, पता नहीं दिल कितने काले हो चुके हैं। और ये बदगुमानियां देखें जब इंसान की आदत पड़ जाती है ना, कभी अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानियां शुरू हो जाती, नहीं अल्लाह ताला ने कभी माफ ही नहीं करना, नहीं अल्लाह ताला तो कभी ये नहीं, मुझे मेरी दुआ तो कभी कबूल ही नहीं होनी। नबियों के बारे में बदगुमानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानी करना या अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानी करना तो कुफर है, कुफर। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानी, तो नहीं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के उनको पता नहीं शादियां करने का शौक था, उन्होंने हजरत आयशा से क्यों शादी की, वो तो इतनी छोटी उम्र की थी, बदगुमानी है ना, बुरी बात जहन के अंदर लाना उनके लिए, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर बदगुमान होना, ऐसे क्यों थे, ये क्यों उन्होंने किया। तो ये बदगुमानियां इंसान को कहां तक पहुंचा देती है, कुफर तक। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम पे। और एक और बात जो बहुत यानी डरने वाली है, इमाम शाफी का एक कॉल मैंने पढ़ा कि उनसे पूछा गया कि अल्लाह ताला के साथ बदगुमानी कैसे की जाती है। अब ये एक नई बात आप सुने, उन्होंने फरमाया ये वसवसे के जरिए होती है, वसवास जो आते हैं ना उसके जरिए अल्लाह ताला से, जैसे मैंने आपको बताई होगी कि हदीस भी है कि एक बंदा को शैतान आके कहता है फलां चीज किसने बनाई, फलां चीज किसने बनाई, वो कहता जाता है ना अल्लाह ने अल्लाह ने, फिर अल्लाह को किसने बनाया, ये बदगुमानी डाल दी जहन के अंदर। तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि वसवसे के जरिए होती है। और ये वाली बात सुने, हमेशा इस बात का डर रहना कि कोई मुसीबत आने वाली है और फिर नेमत खत्म हो जाएगी, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, कि ये भी बदगुमानी में शुमार होता है, कि अल्लाह ताला से ये गुमान रखते हैं कि बस अब कोई मुसीबत आएगी और मेरी नेमत खत्म हो जाएगी, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी। इसमें भी हम कितने मुब्तला रहते हैं ना, कि हमें ये डर रहता है बस अब ये बीमारी हमारे ऊपर बस आने वाली, अब उसको भी लग गए उसको भी, अब बस ये ना हो हमारे घर में शुरू हो जाए, इस तरह की हम कोई भी सूरत सुन लेते हैं तो सोचते हैं कि बस अब ऐसा ही होगा और बदगुमान होने लगते हैं। यानी इसका मतलब हम अल्लाह ताला से बदगुमान हो रहे हैं, ये इमाम शाफी ने फरमाया कि यानी ये भी अल्लाह ताला से बदगुमानी है, ये अल्लाह ताला से हमने बुरा गुमान किया कि वो ऐसा करेगा। तो अल्लाह ताला से तो हमेशा अच्छा ही गुमान रखना चाहिए, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी। तो इस तरह का गुमान हम कभी ना कभी इस चीज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। और अगर वाकई इंसान अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करने लगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना जिस तरह का भी हदीसे बल्कि हदीसे कुदसी है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, वो जैसा चाहे मेरे बारे में गुमान करे, जैसा तुम गुमान करोगे उस तरह होगा। कि हम अल्लाह ताला से गुमान करें, अल्लाह ताला तू तो रहीम है, तू तो करीम है, अल्लाह मुझे इसमें मुब्तिला नहीं करेगा, तो इंसान की कितनी एंग्जाइटीज खत्म हो जाए, कितना
इतनी ये फिकरात खत्म हो जाएं, अल्लाह ताला से के साथ अच्छी उम्मीद हमेशा रहे, हमारे खौफ इस तरह के खत्म हो जाएं कि हाय पता नहीं अब ये चीज चली जाएगी, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वो उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय उसके उसको मौत ना आ जाए, हाय उसको बीमारी ना लग जाए, हाय ये चीज ना खत्म हो जाए, हमेशा अल्लाह ताला के बारे में अच्छा ही गुमान रखें। कोई चीज हो जाती, कोई हादसा हो जाता है, वो बाद की बात है, तब भी इंसान अल्लाह से बुरा गुमान ना करे, यही करे हमारे अपने ही गुनाहों का नतीजा। लेकिन अल्लाह ताला से शुरू से ही बुरा गुमान रखना, ये भी बदगुमानी हो जाती है। बल्कि जहन्नुम में जिन लोगों को, कुछ लोगों को निकाला जाएगा, और जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि इनको वापस जहन्नुम में डाल दो, तो एक कहेगा अल्लाह मुझे तो तेरे से उम्मीद हो गई थी कि तूने एक दफा मुझे जहन्नुम से निकाल दिया, तो अब कभी दोबारा नहीं डालेगा, अल्लाह मैं तो तुझसे ये उम्मीद रखता था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि फिर इसको जहन्नुम में दोबारा ना डाला जाए। जो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता है, अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही मामला फरमाता है, हमेशा अच्छी ही उम्मीदें रखें अल्लाह ताला से। हाँ, अपने गुनाहों से हमने डरते रहना है, बिल्कुल अपने गुनाहों की वजह से हमें डरते रहना चाहिए कि अल्लाह इन गुनाहों की सजा में कहीं मैं मुब्तला ना हो जाऊं, लेकिन ये नहीं करना कि हर वक्त अल्लाह ताला से मायूसी की बातें, अल्लाह ताला ने तो मेरी सुननी ही नहीं है, मेरी कहाँ सुनी जाएगी, अब मेरे साथ तो यही होगा, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, ये ना हो। हम अपने गुनाहों की तरफ देखें तो हाँ फिक्र होनी चाहिए, डर होना चाहिए, अल्लाह की रहमत की तरफ देखें तो हमेशा उम्मीद लगनी चाहिए। इस तरह जब इंसानों से भी हम बदगुमान हो जाते हैं ना, तो कभी भी हम उसके साथ फिर अच्छी तरह मिल नहीं सकते, उस बंदे के साथ जिसके साथ हमारी बदगुमानी शुरू हो जाए। लेकिन हालांकि उसकी कोई बेस नहीं थी, वो एक ख्याल ही था, दिल में ख्याल आया कि भाई हाँ ये ऐसा है तो ऐसा है, इसने ये कहा तो इसका मतलब ये होगा। हालांकि अगर किसी ने कुछ बात कही है ना, तो उसका अगर दो माने निकलते हैं, तो हमें क्या सिखाया गया, बुरा वाला माना ना लो, अच्छा वाला ले लो, इसका ये मतलब होगा, ना कि हम ये कहें कि ओ नहीं, ये मैंने अंदर से बारीक देखो बात निकाली, मैं कितनी अकलमंद हूं, इसका मतलब ये था असल में, ऐसे ना करें हम। जैसे मैंने आपको कहा जाहिर पे मामला करें ना, जो वो कह रहा है बस ठीक है, उसने कहा कि मैं नहीं आ सकती, आपने कहा असल में बात तो ये है कि इसको कहीं और बुलाया हुआ था ना, इसलिए नहीं आई, जहन में बात तो ये है कि ये मामला था इसलिए नहीं आई, और अब बहाना अपनी बीमारी का बना लिया, तो ये बदगुमानी हमने कर ली। इतना हम, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों के बारे में भी हम बदगुमान होते हैं ना, जब हम उनको बार बार बदगुमान होके कहते हैं बस ये तो इसने ऐसा है, ये तो ये बुरा है, जैसे ऐब निकालते हैं, इस तरह बदगुमान भी रहते हैं, बदगुमानी से ही चीजें शुरू होती हैं, फिर ऐब भी निकलते, ओके जब सोचते रहते हैं हम वही चीज, मिसाल के तौर पे हमने सोचा फलां चोर है, चोर है, इसने चोरी की होगी, इसने ही की होगी, इसने, तो एक दिन जुबान से भी निकल जाता है तू तो चोर ही है, ठीक है, अब हम कहते रहते हैं ना तू निकम्मा है, तू तुझसे कुछ नहीं होना, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, कभी तूने नमाज नहीं पढ़नी, कभी तूने ऐसे नहीं करनी, तो बार बार दोहराते रहते हैं वही चीज फिर हो जाती। तो गुमान को अच्छा रखेंगे तो फिर देखें इससे आगे खैर निकलेगी, यानी अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें, कहने का ये मकसद, सोच हर एक के बारे में अगर सोच पॉजिटिव होगी ना, आप देखें हमारे जुबान से ना गइबत होगी, ना कोई तजस्सुस होगा, ना कुछ हो, और हमेशा ये देखें कि ये जो हमें अगर बदगुमान कोई कर भी रहा है, तो वो कौन है जो कर रहा है और किसके बारे में कर रहा है। मिसाल के तौर पर किसी नेक बंदे के बारे में कोई ऐसा बंदा आके बदगुमानी डाल रहा है, ये तो ऐसे हैं, ये तो ये है, इसकी ये बात ये बात, तो देख तो लें जो कहने वाला है वो क्या है। आप देख लेते हैं ना कई दफा बदगुमानियां लोग डालते हैं दीनदारों के बारे में, ऐसे ये मौलवी तो ऐसे होते हैं, इन्होंने तो ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, अब उसके बाद क्या दिल खट्टा हो गया किसी का, अब उसने भी अपने गुमान से ही शुरू कर दिया, दिल खट्टा हो गया, और फिर अब ना किसी आलिम दीन के पास बैठने का दिल करता है, ना किसी से सीखने का दिल करता है, क्योंकि दिल में क्या है ये तो है ही ऐसे, ये है, ये करप्ट है, इन्होंने ये किया, फलां वक्त में ऐसा हुआ, फलां वक्त में खबरों में ये आया था, तो बुरा अखलाक इससे पैदा होता है। कहने को बहुत छोटी सी चीज लगती है कि सिर्फ ख्याल ही तो है। किसी ने कहा पर्देदार औरतों के बारे में क्या कहना, वो बड़े पर्दे करती हैं और असल में तो ये डेट्स पे जाती हैं, इस तरह पर्दे कर करके, निकाब कर करके, और धंधे करती हैं और रातों को खड़ी होती हैं, और वो वहां पे उनको गाड़ियों में बिठा के लोग लेके जा रहे थे, बुरके पहने होते हैं, तो ये बुरका तो बुरी चीज है। अब देखें, एक बदगुमानी से शुरू हुई बात, कितनी औरतें थी जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन सबको उसमें लपेट लिया गया। तो अगर बदगुमानी आ भी जाए तो उसको फैलाते तो ना फिरें, उसको जुबान पे तो ना लेकर आए, उसकी टो में ना लगे, उसका तजस्सुस ना करें। और गुमान हमारा अपना बुरा होता है, लेकिन हम जिस मजलिस में बैठते हैं वहां पे उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारे गुमान में आया कि इसकी तो नीयत ही नहीं थी ये काम करने की, इसीलिए नहीं ना इसने किया, तो इसकी नीयत ही बुरी थी। तो हमें क्या पता नीयत बुरी थी कि नहीं बुरी थी, उसने बताया जुबान से कि नीयत बुरी थी कि नहीं मेरी, और मैंने किस नीयत से नहीं किया ये काम। तो ऑलवेज नेगेटिव से बात स्टार्ट करना, हर एक को देखना तो नेगेटिव ही सोचना, ये आया क्यों, ये गया क्यों, इसने ये बात क्यों की, किसी ना किसी की नेगेटिव चीज सोच के फिर उसकी शिकायतें करते रहना, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, फिर उसकी गिबतें शुरू कर देना, फिर उसको बुरा भला कहना शुरू कर देना। ओके, बात कहां से शुरू हुई थी, जहन की खराबी से। ऐसा इंसान लोगों से हमेशा नफरत करता है, उसको हमेशा शिकायत रहती है सारी दुनिया से, क्योंकि बदगुमानी उसके अपने अंदर है, सारे ही बुरे, सारे ही मतलबी, सारे ही ऐसे, सबको वो लपेट लेता है। तो वो क्या अच्छे अखलाक दिखाएगा किसी के साथ, फिर लोग भी उससे नफरत करते हैं, और ऐसा इंसान लोगों से मोहतात होता है, कहा जाता है लोग भी उससे मोहतात रहते हैं फिर। तो अगर बदगुमानी हो भी जाए तो भी उसकी तावील दे, अंदर कोई दिल में ख्याल आया ना तो उसको लेके ना चल पड़े, क्योंकि अगर आपने उसको पुख्ता कर लिया दिल में तो फिर एक दिन जुबान से निकल आएगा, उसी वक्त उसको वहीं पे डिफ्यूज करने की कोशिश करनी है हमने, या भाई अच्छा अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है ऐसा भी तो हो गया हो सकता है ये उसको इमरजेंसी हो गई हो। तो गुमान को अच्छा रखें हर चीज के बारे में, किसी इंसानों के ही नहीं, हम बाज दफा गुमान ये करने लगते, ये बीमारी आई है ना इसने नहीं कभी खत्म होना, कभी नहीं इसने खत्म होना, ये तो अब बस मेरा खात्मा ही करके जाएगी, तो फिर उसके बाद क्या होता, फिर वैसा ही होना भी शुरू हो जाता है। बुरी बात मुंह से निकालना, बुरी सोच रखना, नेगेटिव जिसको कहते हैं, नेगेटिव सोच रखना, नेगेटिव बात मुंह से निकालना, हम वहां जाएंगे तो हमें कोई चोर पड़ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। अब देख लें, बदगुमानी से ही एक बात शुरू हुई थी कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर जो बोहतान लगाया था मुनाफिकी ने, बदगुमानी थी ना कि उनके साथ आ रही है, बस कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, ये फलां इस घर से निकल रहा है ना, हाँ पता नहीं इस औरत का कैरेक्टर क्या होगा, किसके बारे में ऐसी कोई चीज देख के उसके बाद उसके बारे में ऐसी बात शुरू कर देना। इस तरह ही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए गए थे छह हिजरी में, जिसमें सुलह हुदैबिया का वाकया हुआ था, तो मुनाफिक आपके साथ बदगुमानी कर रहे थे कि ये बगैर हथियार लिए मुशरिकीन की तरफ जा रहे हैं और अब ये मारे जाएंगे, अब इन्होंने मदीना वापस आना ही नहीं, अल्लाह ताला ने इनके रद में सूरह फतह की आयत उतारी जो 12 नंबर थी, बल ज़नन्तुम से, कि या तुम गुमान करते थे कि ये तो कभी भी नहीं वापस आएंगे, अपने घरों को लौटेंगे ही नहीं। तो ये सारे गुमान होते हैं जिससे आगे फिर इंसान स्टेप उठाता है, और आपसे सलाम ने फरमाया जब तुम किसी के मुतालिक बदगुमानी करो तो इसकी तहकीक ना करो, यानी अब जहन में एक ख्याल आया ना तो अब चल भी पड़े हैं देखने के लिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं, बदगुमानी आ गई मसलन है कि फलां का कैरेक्टर नहीं सही, तो अब देखें जरा जाके भी इसका भी पीछा भी करें, फलां के बारे में ये आया बदगुमानी आ गई, ये तो हराम खाते हैं, सर हम चेक तो करें। तो फिर आप आगे ना उसकी टो में ना लग जाए। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया किसी मुसलमान शख्स के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से कोई बात सुन के इसके मुतालिक बदगुमानी करे, जब तक किसी की बात का कोई नेक नेक पॉइंट उसमें से महमल ना निकाल ले। जब कोई बात निकल सकती हो, कोई नेक बात इसमें से निकल सकती तो वो निकाले। अब जो जन जो गुमान जो है जायज है वो कौन से हैं, या आप कोई ऐसा जायज गुमान भी होता है जो आप कर सकते हैं? मसलन है आपने दुश्मन के मुतालिक, ताहिर है कि उससे जान का माल का खतरा होता है, तो अब ये नहीं कि हम उसके बाद अगले गुमान ही ना करें कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा और हम ऐसे ही बैठ जाएं, हम कहें कि नहीं कुछ भी नहीं होता, वो तो मेरा दुश्मन है ही नहीं, वो तो कुछ करेगा ही नहीं। नहीं, ये ना हो कि खुद नुकसान उठाना पड़े। और इसी तरह किसी को आप देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अहादीस की किताबों के अंदर बाज़ जब मुहद्दिसीन की किताबों में बाज़ को लिखा हुआ है कि इसकी हदीस नहीं ली गई क्योंकि ये कज़्ज़ाब था, तो इसकी अब ये बदगुमानी रखना कि हाँ भाई ये वाकई इसकी नहीं लेनी हदीस, इस बंदे से नहीं लेनी क्योंकि ये झूठा था, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ऐसी बदगुमानी में कोई, या फिर किसी का खुला खुला पता है कि ये भाई गलत रास्ते पे ले जाने वाला है, इसकी ये गलत आदमी है, इसका खुला खुला सबको मालूम है और वो खुद भी मुंह से कहता है, अब उसके पास आप जाके बैठ जाएंगे मैं तो इसके साथ वक्त गुजारूं और इसकी कंपनी में रहूं, तो नहीं, फिर आप उससे दूर रहें कि आपने अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि आप आपका ये बात साफ वाजे हो गई, ये सिर्फ आपका गुमान नहीं है। और अगर कोई हमारे बारे में बदगुमानी में मुब्तला हो जाए तो अब तल इम्कान इंसान कोशिश करे कि उसकी बदगुमानी को दूर कर दे, ये ना कहे जो मर्जी कहता है कहता रहे, जो मर्जी सोचता है सोचता रहे, नहीं ये ना हो कि शैतान उसको वसवसों में डाल के आपसे दूर कर दे। तो मैंने तो नहीं कुछ क्लैरिफिकेशन, मुझे क्या जरूरत है क्लैरिफिकेशन देने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तकाफ में बैठे हुए थे, सफिया को घर छोड़ने के लिए गए तो सहाबा ने देखा कुछ नहीं, तो आपने फरमाया ये मेरी बीवी है, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह हम आपके बारे में कोई ऐसी बात कैसे सोच सकते, आपने फरमाया नहीं, शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, वो शैतान उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें डाल दे, इसीलिए फरमाया ना कौलन सदीदा कहो, सीधी बात कहो, ऐसी ऐसी लिपटा के इस तरह उस तरह उल्टी सीधी ऐसी करके बातें कहो ही ना कि जिससे दूसरे के दिमाग के अंदर शैतान कुछ डाल सके बातें, सीधी बात क्यों नहीं करते, सीधी बात करोगे ताकि शैतान को मौका ना दो कि आप दोनों के दरमियान ताल्लुकात को खराब करे, तो जब हम लगी लिपटी ऐसी बातें करते ना तो फिर ही शैतान को मौका मिल जाता है। तो अगर शैतान किसी के जहन में डाल भी दे तब भी खुद कोशिश करें कि उसके जहन से इस बात को निकाल दे और बेपरवाह ना हो। इमाम गजाली फरमाते हैं शैतान आदमी के दिल में बदगुमानी डालता है, तो मुसलमान को चाहिए कि वह शैतान की तस्दीक ना करे कि मान ली हमने भी बात, और उसको खुश ना करे, हत्ता कि अगर किसी के मुंह से शराब की बू भी आ रही हो तो फिर भी इस पर हद लगाना जायज नहीं, क्योंकि हो सकता है उसने शराब का एक घूंट पी के कुल्ली कर दी हो या किसी ने उसको जबरदस्ती पिला दी, तो वो शैतान को खुश ना करे बदगुमानी को मान के कि हाँ भाई ऐसा ही है। आप सरम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुसलमान पर मुसलमान का खून को और उसके माल को और उसके मुतल्लिक बदगुमानी को हराम कर दिया, इसलिए जब तक वो खुद आंखों से ना देख ले या उस पर दो नेक लोग गवाह ना हो जाएं उस वक्त तक मुसलमान के मुतल्लिक बदगुमानी करना जायज नहीं है। यही ना, फिर शक का बीज भी यहीं से होता है ना, किसी हस्बैंड ने देख ली कोई बात ऐसी, उसने वहां से बदगुमानी शुरू कर दी, मेरी बीवी का पता नहीं किसी के और के साथ ताल्लुक तो नहीं, ये बदगुमानी है। तो इसलिए बदगुमानी से बचना चाहिए।
और ये यकीन रखना चाहिए कि शैतान बदगुमानी डालेगा, तो मैंने इसे हतल इम्कान अपने आप को दूर रखना। वला तजस्सुसु, और ना तजस्सुस करो। तजस्सुस क्या होता है? किसी खबर की टो में लग जाना, टो में लग जाना यानी खोज कुरेद करना शुरू कर देना, इसकी जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर बुरे अमल के लिए होता है, वैसे नहीं कि अब जो मतलब जायज भी है तजस्सुस करना, एक वो मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी उसकी बातें, लेकिन वैसे ही किसी के छुपे बातों को ना या राजों को जानने की कोशिश करना जिनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, या जिनका खुल जाना उस बंदे के लिए, उस बंदे को अच्छा नहीं लगेगा। अब हम टो में लग गए, जिसको कहते हैं जासूसियां करना, उसकी जासूसी में लग गए। अपने बच्चों को भी इसी तरह सिखा देते हैं फिर, कि किसी के घर गए हैं तो फिर आंटी क्या कर रही थी, उन्होंने क्या कहा था, आपको खाने को क्या दिया, अंकल आए थे कि नहीं, उनका घर कैसा था, घर में ये था कि नहीं था। अब देखिए ये कितना तजस्सुस है। तो इब्ने जौजी कहते हैं कि मुफसरीन के नजदीक तजस्सुस से मुराद मुसलमानों के ऐबों की कुरेद करना, उनके पर्दे के पीछे चीजों की टो लगाना। नहीं, हमें पता तो चले इनकी शादी हुई है, खुश तो हैं कि नहीं है, और फलां इसकी तनख्वाह कितनी है, जरा अंदाजा तो कर लगाएं हम। वो कितने बड़े घर में रहता है, जरा इससे पूछा जाए, ताकि उससे फिर अंदाजा किया जाए कि कुछ है भी या नहीं है। उसकी उम्र कितनी है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएं जिससे, अब साफ तो पूछ नहीं सकते, जिससे किसी तरह कैलकुलेट कर लें हम कि उम्र बनती कितनी है। तो किसी के अंदर के हालात मालूम करना, ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। जो अपने ऐबों के बारे में कॉन्शियस हो जाए ना कि मैंने अपने ऐब देखने हैं, उसको तो इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो तजस्सुस करे या दूसरों के ऐबों को तलाश करे, क्योंकि फिर इसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। अपने ऐबों को तो मैं ठीक कर लूं, मैं ठीक है, तजस्सुस करने के लिए भी टाइम चाहिए ना, इतना खाली जहन चाहिए, इसी तरह गुमान करने के लिए भी खाली जहन चाहिए, फारिग जहन चाहिए। वही लोग जो ज्यादा बड़े फारिग होते हैं ना, उनको बस गुमान करते रहने का टाइम मिल जाता है, वो खाली जहन है जो शैतान का घर होता है, ठीक है। इसी तरह वो लोग जो बुरी कंपनी में बैठते हैं, वहां पे भी उनको बदगुमानियां ही फीड की जाती हैं। देखा, इसने तुम्हें ये कहा था ना, तुम नहीं समझी, तुम तो पागल हो, तुम्हें क्या पता उसका ये मतलब था, अब आपको दिमाग में आया भी नहीं तो उसने बदगुमानी घुसा दी। तो अब इसके बाद अब आप तजस्सुस में पड़ जाते हैं, मैं देखूं तो सही, हाँ ये ऐसा ही है या नहीं, जो जासूसियां करने, इन्वेस्टिगेट करने, उसकी किसी के राजों को खोलने के लिए। तो कहीं किसी मुसलमान की टो में ना लगो, उसकी इसकी हालत पे छोड़ दो। हम टो भी लगाते हैं, फिर उसके बाद जब बात पता चल जाती तो अब चैन कहाँ आएगा, पेट में बात कहाँ रहेगी, अब उसको उछालना भी है, क्योंकि अब मुझे जो पता चल गया, अब उछाल उछाल के इसको बताएंगे उसको बताएंगे। अल्लाह ताला हमें माफ करें। अब ये किस तरह, किन किस किन सूरतों में होता है, लोगों के टेक्स्ट मैसेज पढ़ना, लोगों के फोन खोल के वो पढ़ना, आप अगर अपने बच्चों का कर रहे हैं और उनकी इसलाह मकसूद है तो किसी हद तक जायज हो सकता है, लेकिन उसमें भी बेहतर यही है कि हम उनको पता हो कि मेरी माँ किसी वक्त भी पढ़ सकती, और उनको पता हो कि इनको भी मेरा पासवर्ड पता है। तो इस तरह किसी के घर में झांकना, दरवाजे के आगे ऐसे खड़े होना कि उनके घर के अंदर भी नजर पड़ जाए, किसी के घर के पर्दे नहीं लगे हुए तो उनकी खिड़कियों से देखना कि अंदर क्या हो रहा है। अब यहाँ किसी कोई देख रहा है नमाज पढ़ रही है या सो रही है, प्रिटेंड करना कि मैं तो सो रही हूँ या मैं बड़ी इनहमाक से नमाज पढ़ रही हूँ, और असल में कान दूसरों की बातों पे लगे हूँ, वो समझ रहे हैं सो रही है। ये भी क्या तजस्सुस है ना, किसी से पूछना इसके नंबर कितने आए हैं, तजस्सुस है ना, क्या जरूरत है हमें, क्या इस बात से उसके नंबर कितने आए, हम अपने नंबरों को देखें, हर जगह बैठ के पूछें तुम्हारे कितने नंबर आए, क्यों तजस्सुस है हमें। अब कोई घर पे नहीं है, उसके घर पहुंच गए,
और वहां जाके फिर उनके घर की चीजें हालात देखना कि इनके घर में ये रहते कैसे, गंद डाला हुआ के सफाई की भी। यहाँ हम हमारे यहाँ पे घर ऐसे हैं कि जिनमें एक जगह से दूसरे में, कमरे से दूसरे में आवाज जाती है, तो जरा कान लगा लेना या फिर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाना। अंदर उनको पता ही नहीं है कि ये बातें सुन रहे हैं, दरवाजे के आगे कान लगा के खड़े हैं, बातें सुन रहे हैं। ये हमें हमारे इसमें मीडिया में तो इस तरह काफी दिखाया जाता है ना, उसने उसकी बात सुन ली, उसने उसकी बात सुन ली, जबकि हमें ये बताया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दूसरों की बात सुनने के लिए कान लगाए, जो इसे पसंद ना करता हो, यानी उसको नहीं पसंद होगा अगर वो देख ले आपको, इसीलिए तो छुप छुप के सुन रहे हैं, वरना अंदर ना चले जाए। वो अगर वो देख ले तो उसको पसंद नहीं आएगा कि ये मेरी बात सुन रहा है, या उससे भागते हैं, यानी वो चाह रहे हैं अपनी कोई राज की बात करें, वो आपसे भाग के दूसरी तरफ कर रहे हैं और आप खड़े हुए सुन रहे हैं, तो कयामत के दिन उस शख्स के कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। और ये किसकी खसलत होती है, किस जानवर की खसलत होती है कि वो हर तरफ सूंघता फिरता है और स्पाई करता है? कुत्ते की। अबू जैद कहते हैं कि ऐसे तलाश करना जैसे कुत्ते तलाश करते हैं। क्या एक इंसान ऐसा बनना चाहता है कि वो कुत्ते की तरह हो जाए, स्पाइंग, हर एक के ऊपर स्पाई करना, शादी पे करें तो अच्छा इसने ये किस ब्रांड का जोड़ा पहना होगा, कितने का होगा ये, तकरीबन तजस्सुस इसके अंदर, हालांकि हमें इससे क्या, उसने कितने का पहना हुआ ये जोड़ा, इसकी शादी का जोड़ा कीमती है कि नहीं कीमती, अच्छा फलां की शादी में फलां फलां रिश्तेदार इनके आए कि नहीं आए, अच्छा जरूर फिर आगे बदगुमानी शुरू होगी ना, जरूर फिर इनसे नाराज ही होंगे जो नहीं आए, लोगों की डायरियां पढ़ना, लोगों के घर चले गए हैं तो वो उन्होंने बिठाया भैया आपको एक जगह पे है, जिस जगह पे बिठाया वहीं बैठे रहे, नहीं जरा जाके देखते हैं, उसके पीछे पीछे ही चल पड़े, उसके किचन में जाके जरा आप नजरें घुमा के देख रहे हैं कि क्या 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 पड़ा हुआ है और कैसा कैसा है, किसी के बाथरूम में चले गए तो उनके ड्रॉर खोल के देख रहे हैं, कैबिनेट्स खोल के देख रहे हैं, साथ क्लॉजेट है तो उसमें देख रहे हैं घुस के, हालांकि हमारा कोई काम नहीं। फिर आप देखेंगे किसी की भी बातें, राज की बातें ऐसी सुनना कि उसके खत पढ़ने शुरू हो जाना, उसके ईमेल्स पढ़ने शुरू हो जाना, ये पढ़ने से भी मुतल्लिक है, देखने से भी मुतल्लिक है। इसी तरह आप देखेंगे किसी के पर्स को खोल के देखने लगना, वो नहीं है यहाँ पे, उसको पता नहीं है, चोरी नहीं करनी, बस तजस्सुस है, क्या रखा हुआ है, क्या करती है, इसी तरह किसी से पूछने लगना, अच्छा आपने आज तहज्जुद पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कितना कुरान पढ़ती हैं आप रोज, नहीं हाँ अगर तो हाँ भाई किसी ऐसे से पूछ रहे हैं कि आपने कोई तालीम लेनी है उससे या कुछ आपने सीखना है या आपने भी वैसा करना है, तो वो तो एक अलग बात है, वैसे ही पूछते रहना, तो दूसरों के राजों की टो में हम क्यों रहते हैं? अच्छा तुम्हारी सास ने क्या किया, अच्छा तुम्हें क्या दिया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया, ये बातें हमारे पूछने की नहीं है, हम सीक्रेट सर्विस ना बने, ये सीआईडी करते फिरे हर एक की। हाँ यहाँ पे ये जायज है, जहां पे मसलन मुल्कों में है सीक्रेट सर्विस है वहां पे तजस्सुस करना ठीक है, वो तो इसलिए होता है कि मुसलमानों को दूसरे दुश्मनों के उससे बचाया जाए, उनके जरर से तबाहकारी से बचाया जाए, या कोई जंगी मालूमात किसी की करनी है तो हर मुल्क की सीक्रेट सर्विस होती है, तो वो हद तक तो जायज है, लेकिन यहाँ तो घर घर सीक्रेट सर्विस बने हुए और इसको जायज समझते हैं हम, और ऐसे सवाल भी ना पूछे ना जिसमें तजस्सुस है कि जरा मैं देखूं तो सही, घुमा घुमा के ऐसे सवाल करना कि जिसमें असल में निकलवाना कुछ और मकसूद होता है। अब चैन तो आता नहीं, पेट में दर्द हो रहा है कि जब से इसकी शादी हुई हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसके हालात हैं क्या, या ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किधर जा रहे हैं, बस हमसाए तजस्सुस करते हैं कि उनका बस काम ही होता है कि बस खिड़कियों से लगे रहते हैं, कौन आ रहा है इनके घर, कौन जा रहा है, ये खुद निकल रहे हैं तो किधर है, इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, बस के बच्चों के ऊपर तजस्सुस होता है,
उनके बच्चे कैसे हैं, कैसे निकले, क्या किया। उससे सर ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई की आंख में तिनका देखता है और अपनी आंख को भूल जाता है। दूसरों के लिए तो बड़े तजस्सुस हैं, उन पे तो नजरें गाड़ी ही नहीं है, और अपने ऐबों का कभी पता ही नहीं। और ये तो ऐब तलाश करने के लिए होता है ना, यहाँ पता नहीं चैन ही नहीं आता, यहाँ पता नहीं फारिग वक्त बहुत होता है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पे पर्दा रखा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ऐबों पे पर्दा रखेगा। बुखारी और मुस्लिम में तो हमें तो पर्दा डालने का कहा गया ना, हम तो जासूस कर रहे हैं, हमें पर्दा डालने का कहा गया और हम उसके ऐब बयान कर रहे हैं। तो हम पर्दा डालें, हम उसको तलाश ना करें, कुरेदे ना। और जिन चीजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अगर वो ऐब नहीं भी है वैसे ही, हम तो जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम उसको उसमें तजस्सुस करने की भी जरूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोगों के अयूब तलाश करोगे तो तुम उनको खराब कर दोगे, यानी लोगों के ऐबों के पीछे पड़े ही ना, जाहिर जाहिर मामला करते रहे। अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है ना, तो हम पर्दा रहने ही दे, चाहे किसी का कोई गुनाह भी है उसमें भी तजस्सुस ना करें। इसका क्या है ये, क्या ये इस तरह का तो नहीं। हाँ, तजस्सुस उसके अंदर फिर अगेन यहाँ पे जायज हो जाता है, जबकि मिसाल के तौर पे किसी ने किसी साथ रिश्ता करना है, जैसे मैं आपको चंद एक एग्जाम्पल दूँ, रिश्ता करना है या किसी के साथ शराकत करनी है, तो फिर उसके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई हाँ यहाँ पे रिश्ता करना, या उसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत कोई करा लेना, कहीं से पता करा लेना, तो यहाँ तक जायज है। ये इंसान उनके बारे में पूछ रहा है, या शराकत करनी बिजनेस, तो तजस्सुस कर रहा है, जा रहा है, पूछ रहा है भाई इन्होंने पहले किसी साथ मामला किया है तो मतलब कैसा किया था मामला, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन खामखा बैठे गए, तजस्सुस किए जाना, या फिर किसी से इल्म लेना है तो देखते हैं कि भाई इसका अकीदा भी सही है कि नहीं सही, ऐसे ही नहीं कि किसी के पास भी बैठ के तब सीखना शुरू कर दिया। ऐसा तो उमर देखे रातों को गश्त किया करते थे, एक रात किसी के घर के बाहर से मौसीकी की आवाज आई तो दीवार पे चढ़ गए, वहां पे क्या देखा कि सिर्फ गाना ही नहीं चल रहा था, एक औरत भी बैठी हुई और शराब भी चल रही थी। वहीं से हजरत उमर ने पुकारा कि वो दुश्मन खुदा, जब उन्होंने अभी सिर्फ यही कहा तो आगे से वो शख्स बोला, ठहर जाओ अमीरुल मोमिनीन, मैंने जुर्म किया तो आपने भी कोई कम नहीं किया, अल्लाह ताला ने घरों में दाखिल होने के लिए शर्त लगाई है कि दरबारों से दाखिल हो, आप दीवार फांद के आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने तजस्सुस करने से रोका है आपने तजस्सुस किया है, छुपे हुए हालात की टोह लगाने से रोका है आपने वो टोह लगाई, अल्लाह ताला ने इजाजत लेके आने का हुक्म दिया, आप बगैर इजाजत के ही अंदर झांक रहे हो। अच्छा तुमर ने फरमाया तुमने सच कहा है, और उसे बस वादा लिया कि आइंदा ऐसी हरकत ना करनी। इसे पता चलता है यार, अगर चाहे हुकूमत भी है लेकिन वो भी जा जाके लोगों के फोन टेप कर रही है, लोगों के पीछे कर रही है, लोगों की जासूसियां कर रही है, किसी जगह पे जाके इसलिए बैठना कि जरा हम देखें ये क्या बातें करते हैं, अपने नाम चेंज करके आके और फिर बातें उनकी सुनना, उनकी बातें रिकॉर्ड कर लेना। आप देखें जब जासूसी करेंगे किसी के नौकर के सर, ये जासूसी करना, नौकरों को हाथ में ले लेना और उनसे बातें पूछना, अच्छा तुम उन बाजी के घर भी जाती हो ना काम करने के लिए, वो क्या करती हैं, क्या कहती हैं, अल्लाह अकबर कितनी जगह पे तजस्सुस है, कितनी जगह पे। तो इस तरह से तजस्सुस करना भी इंसान को वो उनमें पहुंचा देता है कि फिर आगे से कितने सारे गुनाह इसके जरिए से होते हैं, आगे कितने गुनाह इससे आगे जन्म लेते हैं, वला यगतब, और ना तुम गीबत करो, पहले तजस्सुस हुआ तो फिर आगे गीबत भी होगी, ना तुम गीबत करो बादुकुम बादा बाज बाज की।
अब गइबत क्या चीज है कि इंसान की गैर मौजूदगी में उसकी वो बुराई जिक्र करना जो उसमें हो। कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे किसी की गइबत की गई तो आपने फरमाया तुमने उसकी गइबत की है, तो लोगों ने कहा लेकिन ऐसे तो है उसके अंदर। आपने फरमाया कि जो उसके अंदर है वो ही तो गइबत होती है, जो उसमें नहीं है वो अगर बयान करोगे तो वो तो तुहमत है, बोहतान है। तो गइबत वही है कि वो ऐसा हुआ या ऐसा है, सच की है आपने बात, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में की, या ऐसी बात है कि जो उसके सामने आप नहीं कर सकते, ये जो उसको ना पसंद आए अगर उसके सामने की जाए तो उसको गइबत कहते। अब कुछ लोग कहते हैं हम गइबत तो करते नहीं, हम तो मुंह पे कहते हैं, और मुंह पे उसके वो उसको जलील किया कि बस तो वो इसमें आ जाए, क्योंकि वला तलमिजू अनफुसको, वो भी कोई जायज नहीं है कि भाई ठीक है हम मुंह पे कह रहे हैं, वो भी जायज नहीं है और ये भी जायज नहीं है। तो इसका मतलब है किसी का भी ऐब बयान करना जायज है ही नहीं। किन सूरतों में जायज है वो मैं बताती हूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई के, तुम अपने भाई के इस ऐब का जिक्र करो जिसको वो नापसंद करता हो, ये गइबत है। गइबत गैब से है ना, तो वो गायब है, वो अपना दिफा नहीं कर सकता, वो आगे कुछ कह नहीं सकता, वो इस बंदे को मुंह नहीं पकड़ सकता, इसलिए आसान होती है ये करनी। जो किसी के मौजूदगी में किया जाए, हो सकता है वो बोल पड़े आगे से, हो सकता है वो कुछ कह दे, हो सकता है वो बुरा मान ले, तो लिहाजा वो फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये ज्यादा आसान होता है इसलिए कि कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए कि कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसे पता चला हमें लोगों के मुतालिक तबसरे बंद कर देने चाहिए, और ये भी वो गुनाह हैं जिनमें हम कभी ना कभी जरूर मुलव्वस हुए होते हैं, कभी ना कभी हमारे मुंह से जरूर निकला होता है। अब चाहे किसी की बातें लिख के बयान कर रहे हो, बोल के बयान कर रहे हो, आंख के इशारे से, हाथ के इशारे से, सब गीबत में आता है। देखो जरा इसको, जरा ऐसे करके हमने इशारा किया, देखो इसकी मैनर्स कितनी गंदी हैं, देखो इनके बच्चे तो ऐसे हैं, देखो ये तो खुद ऐसे हैं, देखो ये तो फलां माँ बाप की औलाद हैं, ये तो फलां के बच्चे हैं, ये तो इस तरह जो भी काम करते हैं, ये बड़ी तेज है, बड़ी शेखी खोरी है, बड़ी लालची है, कुछ करने के काबिल नहीं है, फलां बदमाश है, फलां तो ऐसा है, ये पेंडू है। क्यों की जाती थी बात? बाज़ दफ़ा इसलिए कि इंसान खुद किसी से हर्ट हुआ होता है तो इसलिए अपना दिल हल्का करता है, बाज़ दफ़ा हंसी मजाक में करता है, नकलें उतारना, वो बंदा है नहीं उसकी नकलें उतारी जा रही हैं, ये गइबत ही है। तो वैसे ही नकल उतारना, किसी की तमस्कर उड़ाना है, वो भी एक गुनाह हुआ और एक गइबत का भी हो गया। नकल उतार उतार के वो ऐसे बात करती है, उसने ऐसे कहा, मुंह उल्टा कर करके बताना, और बास तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए गीबत करते हैं, उनका मशगला होता है गीबत करना, इधर बैठे उधर दूसरों की बुराइयां शुरू करो, एक सामने नहीं है तो बस उसकी बुराई कर रहे हैं, जो ही वो सामने आ जाएगा फिर उसकी कोई बुराई नहीं है, फिर उसके बाद तीसरे की बुराई शुरू कर देंगे। किसी ने एक रियल स्टोरी उन्होंने शेयर की, उन्होंने कहा कि वो कहीं गए, उन्होंने कुछ लोगों को पिक करना था, तो उनको पिक किया, 3 लोगों को पिक किया, तो गाड़ी में बैठे हुए जब वो 3 लोग बैठे हैं तो उन्होंने कहा वो किसी की उन्होंने बुराई शुरू कर दी, उसकी इतनी बुराइयां की, उसके बाद एक बंदे को ड्रॉप करने का टाइम आ गया, तो उसको उन्होंने जब ड्रॉप किया तो जूं ही वो गाड़ी से निकला और गाड़ी आगे चली, तो वो जो 2 रह गए थे वो इस उतरने वाले की बुराइयां शुरू करने लगे, उसकी बुराई करने लगे। जो दूसरों की बुराइयां करता है ना, वो किसी दिन आपकी भी करेगा, जो आपके साथ किसी की बुराई करता है ना, एक दिन जरूर वो आपकी भी करेगा, ऐसे हो नहीं सकता कि वो ना करे। तो उसके साथ मिल मिल के बैठ के बुराइयां करना, कोई ये नहीं कि आप खुद महफूज हो जाएंगे, हम में से कोई नहीं चाहता हमारी कोई बुराई करे, हम दूसरों की बुराइयां कितने आराम से कर लेते हैं। बाज़ दफा सिर्फ इसलिए हम गीबत कर रहे होते हैं कि किसी के साथ हमें बना के रखनी है, इसके साथ मिलके हिम्मत करेंगे किसी तीसरे की, तो इसके साथ मेरे टर्म्स अच्छे होंगे। मिसाल के तौर पे किसी के सास के साथ बैठ के उसकी बहू की बुराइयां करना, तो अब सास की तो ये बेस्ट फ्रेंड बन गई, क्योंकि दोनों के एक ही बुराई कर रहे हैं। सास ने कहा इससे ज्यादा अच्छा मेरा कौन हो सकता है जिसने मेरे साथ मिलके उसकी बुराई की, जरा बहुओं के साथ बैठ के सासों की नंदों की बुराइयां करना। तो अब वो ये बहू सोचेगी कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि ये मेरा साथ देने वाली है, तो साथ किसने दिया? उसने तो गइबत की, उसने तो गुनाह किया, और साथ हम सुनते रहे तो हम भी गुनाहगार हो गए। क्योंकि मैमून बिन सयाह कहते हैं कि मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में एक हबशी की लाश देखी। आगे आ रहा है ना, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरहतुमूहु, क्या कोई पसंद करता है कि वो खाए अपने भाई मुर्दा भाई का गोश्त, तो तुम नापसंद करोगे इसको। तो कहते हैं मैंने एक हबशी की लाश देखी और कोई कह रहा था कि इसको खाओ, तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं क्यों खाऊं? उसने कहा तुम फलां की गीबत तुमने की है। कहते मैंने कहा मैं तो उसके बारे में मैंने ना कोई अच्छी बात की ना बुरी बात की, मेरे उसकी गीबत से क्या ताल्लुक? तो उसने कहा लेकिन तुमने उसके बारे में बात को गौर से सुना, यानी कोई कर रहा था और तुम बड़े गौर से सुन रहे थे, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, तुम भी मजे ले रहे थे, तो फिर तुम भी इसमें शामिल हो। कहते हैं उसके बाद से मैमून ने ना कभी किसी की गीबत की और ना सुनी। देखिए एक होता है ना सुने और आपका दिल खराब हो रहा है, और आपका दिल इतना तंग हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, और आप उनकी बात पलटाने की भी कोशिश करते हैं कि उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं, उनको ये नहीं कि बदअखलाकी से आप मना करें कि चुप कर जाओ तुम लोग तो बड़े गइबत करने वाले हो, तुम शुरू हो गई हो गइबते करने, नहीं ऐसे नहीं करें, बल्कि आराम से उनको कहें कि चले छोड़े हम जाने दें, चले कोई और टॉपिक करते हैं, क्या जरूरत है हमें, हमें क्या फायदा इससे मिलेगा, चले छोड़े जो लोग करते हैं करते रहें, हमारा क्या इससे लेना देना। यानी कुछ ऐसी बात कह दें जिससे बात पलट जाए, अगर कोई बिल्कुल ही नहीं हट रहे तो वहां से उठ जाए। बाज ऐसी जगह होती हैं आप ना उठ सकते हैं ना आप उनको मना कर सकते हैं, मना ना बात को भी पलटाने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसे काबिल एहतराम है मसलन वालदैन है, अब वो बात कर रहे हैं आप कैसे उनको मना भी करें या कैसे उनके साथ करें, तो फिर भी जहां पे कोई बस ना चले दिल में तो बुरा जाने, दिल में तो कहे ना कोई चीज है जो आपको सबसे, तो ईमान का आला लेवल तो ये है कि इंसान हाथ से मना करे, वरना जुबान से मना करे, वरना दिल में तो बुरा जाने। तो बाज दफा गीबतें इस वजह से होती हैं कि इंसान को बस आदत ही पड़ चुकी है अब गीबतें करने की, बस वो जिधर जाता है उधर तो गीबत ही उसने करनी होती, किसी ना किसी का कोई ऐब, कोई गंदी मक्खी वाली बात, किसी का ऐब उसको पता चल गया, अब उसको फैलाना है, उसने जगह जगह जाके उस गंद को फैलाना है। अब वो जिधर बैठता है किसी ना किसी की बुराई शुरू कर देता है, जो वहां पे नहीं है उसकी बुराई। और जैसे मैंने कहा कि ये भी कि जो जो नंबर बनाने के लिए हम करते हैं ना कि मेरी इसके साथ फ्रेंडशिप हो जाए, या ये मुझे अपनी सगी समझे, या ये मेरे मेरे साथ यानी इसके टर्म्स अच्छे हो जाए क्योंकि इससे मैंने कोई मतलब निकालना है, या वैसे ही फ्रेंडशिप रखनी है, या ऐसे ही बेस्टी इसकी बनना है मैंने, तो इसके साथ मिलके गिफ्टें करूंगी तो फिर बनूंगी ना, फिर भी वो गीबत ही है। अफसलम ने फरमाया अल्लाह ताला के बदतरीन बंदे वो होते हैं, बदतरीन वर्स्ट, जो चुगलखोरी करते हैं, दोस्तों के दरमियान तफरीक डालते हैं। आप जाके उसको बता देना तुम्हारे बारे में ना वो ये कह रही थी, आपकी बहू तो वहां बैठी हुई थी, वो तो ऐसे ही आपके बारे में कह रही थी, बहू को जाकर कह देना तुम्हारी सास तो तुम्हारी ये बातें कर रही थी, शौहर को बीवी के खिलाफ, बीवी को शौहर के खिलाफ, दोस्तों के आपस में, एक दोस्त को कहना तुम्हें पता है वो दोस्त तुम्हारे तो वो तो ये कहने लगी थी। आपसे सलम ने तो फरमाया था कि सहाबा में से कि कोई मुझे किसी के बारे में कोई बात ना पहुंचाए, ताकि मेरा दिल ना किसी से खराब हो, कि मैं उसे फिर मिलूं तो उसके बाद मेरा दिल उससे खराब हो। तो हम कहते हैं कि हमें और बताओ आके, बल्कि तजस्सुस करके आके सीआईडी करके फिर मुझे बताओ, बल्कि होना ये चाहिए कि इस चीज से हम, अच्छा ये एक और भी वजह से होता है कि जब हसद होता है किसी से, कि किसी से हसद होना तो फिर तो दिल करता ही है कि, या किसी पर गुस्सा आया हो कि दिल करता ही, अब इसकी गीबतें ही करें हम, अब तो इसको छोड़े ना। और अगर हमारे सामने किसी की गीबत की जा रही है तो हमें क्या करना है, दिफा करना है उसका, यानी उसके कोई अच्छी बात बता दें कि लेकिन देखो उसमें ये भी तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये भी तो वो करती है ना, ये ना हो कि हम भी उनके साथ मिलके शुरू हो जाएं या और क्वेश्चन करना शुरू हो जाएं या इनकरेज करें उसको कि वो और बताए बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने भाई की तरफ से उस चीज को दूर कर देगा जो उसे ऐबदार करती है, यानी आप उसका ऐबदार कर रही है ना उसको, जबकि वो बात को बता रहा है, तो उससे आपने उसको दूर कर दिया, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके चेहरे से चेहरे को जहन्नुम से दूर कर देगा, आग से दूर कर देगा। और फिर आपने फरमाया जिसने अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी मदद की, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी मदद करेगा, वो नहीं है मौजूद, वो नहीं अपना दिफा कर सकता, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका दिफा किया तो अल्लाह ताला कयामत के दिन इसकी मदद करेगा। अल्लाह हू अकबर। और जिसने किसी मुसलमान के ऐप पे पर्दा रखा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके पर्दे रखेगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो ये क्यों कहा गया, इसको मुर्दा भाई का गोश्त खाना क्यों कहा गया? इसलिए कि गोश्त है ना इंसान को कवर करता है। देखिए गोश्त होता है तो आप अच्छे लगते हैं, अगर स्केलेटन खड़ा हो, ढांचा खड़ा हो तो कितना बुरा लगता है, ऐबदार लगता है ना। तो गोश्त पड़ा हुआ है तो इंसान छुपा हुआ है, उसके ऐब भी जाहिर नहीं हो रहे। तो अब इसने क्या कहा, उस गोश्त को उतार दिया ताकि उसके ऐब जाहिर हो, उसने गोश्त खाया है। तो हमने कितनी दफा गोश्त खाया होगा, मुर्दार का वो भी और वो भी अपने भाई का। अल्लाह हमें माफ करें। अब उसको इल्म भी नहीं होता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारी जानों को एक दूसरे पे हराम किया है, तुम्हारे मालों को हराम किया, तुम्हारी इज्जतों को एक दूसरे पे हराम कर दिए, जिस तरह हज्जतुल विदा पे फरमाया था जिस तरह आज का दिन, ये महीना और इस शहर की हुरमत, हम कितनी इज्जत करते हैं शहर मक्का की, हम कितनी इज्जत करते हैं उस दिन की जो हज का दिन है, उस महीने की जिलहज की, लेकिन इस चीज की हम नहीं हुरमत को पहचानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुझे मेराज कराई गई तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पीतल के नाखून थे और वो नाखूनों से अपने चेहरों को और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा है जिब्राइल ये कौन लोग हैं, उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और इनकी इज्जतों से खेलते थे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने किसी मुसलमान शख्स का गोश्त खाया, यानी उसकी गीबत की, अल्लाह ताला उसको इतनी दोजख की आग खिलाएगा जितना उसने गोश्त खाया। तो समझ लें जितना, आज तो आजादी है हमारे पास, जुबान है, जो मर्जी बोलते रहे, मैं कोई थोड़ी रोकने वाला, कोई भी नहीं रोकेगा, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है। तो अब हम खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको उतनी जहन्नुम की आग खिलाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और जिस शख्स ने किसी मुसलमान का हराम कपड़ा पहना, अल्लाह ताला उसको उतनी दोजख का कपड़ा पहनाएगा। जिसने किसी शख्स को दिखावे और सताने के लिए खड़ा किया, अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन दिखावे और सताने के लिए खड़ा करेगा। सताया गया, कभी अपनी बातों से सताते हैं, कभी अपनी बातों से तंग करते हैं, ऐब निकालते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह अकबर। आप सल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने किसी मोमिन या मोमिना पर बोहतान बांधा, अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन दोजख के एक तबके खब्बाल में बंद रखेगा, हत्ता कि वो अपने बोहतान से निकल आए और वो इससे नहीं निकल सकेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाया, उसके पास कयामत के दिन उसके भाई का गोश्त लाया जाएगा और उसे कहा जाएगा तुम जिस तरह दुनिया में अपने जिंदा भाई का गोश्त खाते थे ना, अब मुर्दा का गोश्त खाओ। और वो चीखे मारेगा और मुंह बिगाड़ेगा और उसको खाना पड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत जिना से भी ज्यादा सख्त गुनाह है। हम लोगों को कहते हैं ये जानी, ये जानी, ये फलां, गीबत जिना से भी ज्यादा सख्त गुनाह। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, गीबत करना जिना से ज्यादा सदगुना कैसे हो गया? आपने फरमाया, एक आदमी जिना करता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता, और गीबत करने वाले को उस वक्त तक बख्शा नहीं जाता जब तक जिसकी गीबत उसने की है वो उसको माफ ना कर दे। और वो माफ करेगा क्या? जब आप किसी के पास जाकर कहेंगे मैंने तुम्हारी गीबत की, मैंने तुम्हारी गीबत की, किस किस को कहेंगे, किस किस को ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? हम तो चलते चलते भी गीबतें कर रहे होते हैं, कोई खड़ा हुआ देखो जरा वो कैसा टेढ़ा, देखो जरा वो कैसा, इनको ये कैसे कर रही है। हम कोई चीज वॉच कर रहे हैं, टीवी में कुछ देख रहे हैं, फिर उसकी गीबतें शुरू करते हैं। हम कहीं बैठे हुए किसी के साथ ना लेना ना देना कोई ताल्लुक नहीं, उसकी गीबतें शुरू कर देंगे, अपने प्यारों की गीबतें शुरू कर देंगे। तो वो तो माफ नहीं करेगा। और कयामत के दिन मुफलिस होंगे ना वो लोग जो इतनी इतनी नेकियां लेकर आएंगे, इतनी नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन क्या होगा फिर, उनको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। इसकी भी गीबत की थी, इसकी भी गीबत की थी, इसकी भी गीबत की थी, सारे ले गए नेकियां, अब नेकियां भी खत्म हो गई तो उनके गुनाह इसके ऊपर डाल दिएगा, तो अब वो किधर जाएगा? कोई माफ थोड़ी करेगा उस दिन। और कब्र का भी अजाब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे ना दो कब्रों के पास से, तो एक कब्र वो में वो था जो पेशाब के कतरों से परहेज नहीं करता था, एहतियात नहीं करता था, दूसरा वो था चुगलखोर चोर था, इधर की बात उधर लगा दी, उधर को जाके उसको कह दिया तुम्हारे बारे में ये कहा, उस उधर उसको कह दिया। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक ऐसी जगह में बंद कर देगा जहन्नुम में, इसी तरह जहन्नुमियों की पीप में इसको डाला जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी नसीब नहीं होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। कभी कभी हम खुद नहीं करना चाहते, लेकिन जब कहीं ऐसी जगह पे बैठते हैं तो फिर बस शुरू हो जाती है, तो फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो अब क्या करें? जो पहले कर चुके हैं उसके ऊपर क्या करें? ये और बहुत ज्यादा यही सवाल आता है ना कि अब हम उन लोगों के पास भी नहीं जाके कह सकते कि हमने आपकी गिबत की है, तो क्या करें? तो फिर इसका तरीका ये बताया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गिबत का कफारा ये है कि तुम उसके लिए इस्तिगफार करो जिसकी गिबत की है। यानी अब आप क्या करें कि अब आप उसको तो नहीं बता सकते, उसे माफी नहीं मांग सकते, तो अल्लाह ताला के पास दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर दे, बख्श दे, उसकी बख्शिश के लिए दुआएं करते रहें। और जिन सूरतों में गीबत हाँ जायज है वो कौन सी सूरतें हैं? पहली सूरत जैसे कि आपके ऊपर किसी ने जुल्म किया है, जैसे ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिसुई में छठा पारा शुरू होता है, तो वो उसमें यही है ना कि मजलूम जो है वो अपनी दादरसी के लिए किसी के पास जाता है, मसलन है काजी या कोर्ट में जाता है, या उसके बराबर का कोई बंदा है जो जिसके पास जुल्म बयान करेगा, तो कोई उसकी यानी सुनी जाएगी, कुछ इसका मदावा हो सकता है, कुछ कुछ फायदा हो सकता है, वो शायद इसको समझाए या इसके खिलाफ कोई फैसला दे या इसको सजा दे या कुछ करे जो कि, या इसको ही कुछ ऐसा बात बता दे कि तुम इस तरह से डील करो जो इसके कुछ हेल्प कर सके। दूसरा, किसी की बुराई को खत्म करने के लिए और बदकार को नेकी की तरफ लाने के लिए किसी के पास जाके उसकी गिबत की जाए कि फलां आदमी ये बुरा काम कर रहा है, उसको रोको या उसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए मतलब हल तलाश करने के लिए। तीसरा, कोई मुफ्ती के पास जाता है, किसी आलिम दीन के पास जाता है कि ये मेरा मसला हुआ और अब इस मसले में मैं क्या करूं, जैसे खवातीन कई उनके मसाइल होते हैं घरों के, वो हस्बैंड के साथ कोई बात हो गई या ऐसा करते हैं, तो अब इसका क्या, इसके अंदर क्या शरई हुक्म है, क्या करना चाहिए। इसी तरह एक और ये वजह हो सकती है कि किसी मुसलमान की खैर ख्वाही करने के लिए, उसको किसी जरर से बचाने के लिए, जैसे कि मसलन हाँ किसी ने, जैसे मैंने बताया कि शादी कहीं करनी है, तो वहां पे आपको पता है कि भाई ये लोग गलत लोग हैं, सही लोग नहीं हैं, इनकी शोहरत अच्छी नहीं है, तो उनको बता दिया जाए कि भाई ये इनके मामलात ऐसे हैं, या फिर किसी ने बिजनेस करना है वो भी पूछ रहा है, तो अब उसके बारे में बता दिया जाए, या फिर किसी ने अमानत किसी के पास रखवानी है तो वो तो खुद चोर है, तो अब वो पता है तो अब आप उनको बताएं ही ना। नहीं हमें क्या जो मर्जी करते रहे, हमें क्या जिधर उन्हें शादी करनी करते रहे भाई, हमें ना कोई कुछ करे उसमें हम इतने नेक बन जाते हैं। या कोई कह रहा है कि मैंने वहां पे घर लेना है किसी के पड़ोस में, तो वो लोग अच्छे नहीं है लोग, तो उनको बता दिया जाए कि ये नेबरहुड सही नहीं है, यहाँ पे ये ऐसे लोग हैं। या किसी शख्स से किसी भी किस्म का मामला करने के लिए मशवरा लिया जाए, और आपको पता है कि वहां पे ये ऐब है, वहां पे ये है, तो मशवरा लेने वाले के लिए जरूरी है कि वो बात को बता दे कि भाई ये बात है इसमें, फिर आप केयरफुल हो जाएं, आप ये काम ना करें, तो खैर ख्वाही है ना किसी मुसलमान की, ताकि उसको आप नुकसान से बचा लें। या आप किसी को देखते हैं कि कोई मिसाल के तौर पे कोई तालिबे इल्म है या कोई लोग हैं किसी बिदती की या फासिक की या कोई गलत आदमी है उसकी मसलन है कि वीडियोस देखते हैं और उससे इल्म ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं हम फलाने को सुनते हैं, हम फलाने को सुनते हैं, जबकि वो सही नहीं है, तो अब बता दें कि वो सही नहीं है, इसलिए कि वो जो इनको तालीम देगा या जो इसकी इसकी वीडियोस देख रहे हैं या जो इसके इसके लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये ना हो कि ये इनका भी अकीदा खराब हो जाए या ये भी किसी और तरफ बिदतों में पड़ जाए या ये गलत चीज सीख लें, तो अब बताना जरूरी है। अब ये ना कहे नहीं हम फिर कैसे बता सकते। इसी तरह मसलन किसी का पता है वो हमेशा हर जगह मशहूर ही है कि मिसाल के तौर पे किसी का नाम पड़ा हुआ है कि वो लंगड़ा है या वो ये है, उसके लकब मशहूर है, तो अब उसकी उसको उसी से बुलाना, उसके उसका जिक्र इसी तरह उसी बात से करना कि वो जो लंगड़ा है या वो जो वो है, तो वो जायज है। फिर वो आप उसके अंदर कोई नक्स नहीं निकाल रहे, वो इसी तरह से इसी तरह मशहूर है, इसी तरह उसका नाम है। और इसी तरह कोई किसी को किसी इलाके का हाकिम बनाया जाए लेकिन वो इस मनसब का अहल नहीं है, और आपको पता है कि उसके अंदर ये बातें हैं, अब आप हाकिम के सामने जाके उसकी बात बता दें कि ये भाई इसके अंदर ये मसले हैं और ये इसका अहल नहीं है, तो ये भी रिबत में नहीं आएगा। इसी तरह इब्ने उयना ने 3 आदमियों के बारे में बताया कि इनका ऐब बयान करना गीबत नहीं होगी, जैसे कोई जालिम हुक्मरान है या जो शख्स लोगों के सामने अल्लाह की नाफरमानी करता हो या जो बिदती हो जो लोगों को अपनी बिदत की दावत देता हो, इन 3 के बारे में बात करना गीबत नहीं है। लेकिन फिर इसमें भी इतना ना बढ़ जाए कि हर टाइम बस यही बातें करते रहे, हर टाइम बस यही होता रहे, इतना आपने किसी की शिकायत करनी है कहीं जाके पुलिस में है या कुछ है कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो फिर गइबत नहीं होगी, इसलिए कि जाहिर है फिर आप बताएंगे नहीं तो कैसे शिकायत लगाएंगे। या दूसरी मैंने आपको सूरत बताई कि लोगों को जरर से बचाना, कोई किसी को कोई चीज बेच रहा है और आपको पता है कि ये चीज में ये ऐब है, उसने तो नहीं बताया, वो ऐब वाली चीज बेचने लगा हुआ, तो अब आप बता दें कि भाई ये बंदा इस ये ऐब वाली चीज तुम्हें बेच रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो तुम तो नहीं पसंद करोगे कि तुम ये ऐसा गोश्त खाओ तो फिर तुम गइबत करके तो तुम समझ लो कि अपने मुसलमान भाई का गोश्त खा रहे हो, तो हम सबसे पहले आज इससे तौबा करें, क्योंकि आगे आया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन अल्लाह तवाबुर रहीम, अल्लाह ताला से डर जाओ, क्योंकि तकवा होगा ही तो इंसान गुनाहों से बच सकता है, वरना हर जगह कोई किसी को नोट करने के लिए नहीं खड़ा हुआ कि किसके दिल में क्या गुमान है, कौन तजस्सुस कर रहा है, कौन गीबतें कर रहा है, कौन किसके पीछे जाएगा। लिहाजा तकवा होगा, तकवा क्या चीज होती है, तकवा यही चीज होती है कि मुत्तकी वो इंसान है कि जो गुनाहों से बचे, गुनाहों को छोड़ दे अल्लाह के डर की वजह से और नेकी के कामों की तरफ दौड़ लगाए, यही मुत्तकी है, यही तकवा है। और तकवा है जरूरी इसके लिए, वरना किसी के डर से, किसी हाकिम ने आपसे नहीं करवाना, मुझसे नहीं करवाना, किसी जगह का ये लॉ नहीं बन सकता कि हाँ भाई लोगों को कहा जाए कि नहीं भाई आपने ना गइबत करनी है, ना आपने ये करना, नहीं कुछ, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। ये तो, ये तकवा होगा दिलों के अंदर तो इंसान खुद बच के रहेगा। जो चीज भी गुनाह में डालती हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे कोई मजलिस हो, चाहे वो कोई लोग हैं, चाहे वो कोई काम है, उनसे बच के रहना, ये तकवा है। इवन यहां तक कि बेमकसद चीजें भी छोड़ देना, एमलेस चीजें जिनका ना कोई गुनाह ना कोई फायदा, उनको भी छोड़ देना, ये तकवा है। और नेकी की चीजों को करना, नेकी में आगे बढ़ना, अल्लाह ताला की इताअत के कामों को पसंद करना और उनको अपनाना, ये तकवा है। तो जिसके अंदर ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा वो मुत्तकी होगा। तकवा भी सबका एक लेवल का नहीं होता, हम थोड़े थोड़े काम इधर के भी कर लें उधर के भी कर लें, तो इसका मतलब हम लो लेवल का तकवा है। थोड़ी थोड़ी नेकी के काम भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को बड़े पसंद है, और साथ साथ नाफरमानी भी शुरू हुई थी। तकवा का मतलब बचना इसीलिए किया जाता है ना, बचना कि किस चीज से बचता है, अल्लाह की नाराजगी से। तो कितने मौके ऐसे हैं हमारे सामने अल्लाह की नाराजगी के आते हैं, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग खुश हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि बस हमने इन भी तो रहना है लोगों में, सिर्फ इसलिए कि हम अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो हम करते चले जाते हैं। कभी खानदानों में इन रहने के लिए, कभी रिश्तेदारों में, कभी लोगों में, कभी दोस्तों में, तो ये फिर तकवा तो ना हुआ। तकवा तो है कि बच बच के ऐसे जिंदगी गुजारें जैसे आप कांटों भरे रास्ते में चल रहे हैं, आपने अपना दामन बचा बचा के चलना होता है, या कीचड़ के पास से गुजर रहे हैं, हर तरफ कीचड़ होता है, तो आप अपने कपड़े जो है ना समेट समेट के चलते हैं कहीं कीचड़ ना लग जाए। यही तकवा वाली जिंदगी होती है कि इतना कुछ है इर्द गिर्द, हम अपने आप को बचा बचा के चलते हैं और अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें कि उसकी नाफरमानी वाले कामों से बच के उसकी फरमाबरदारी वाले काम जो उसको पसंद है वो करें। हम बाज दफा अपने आप को मुत्तकी भी समझते रहते हैं और फिर हम करते वही हैं जो लोगों को पसंद है, ये नहीं देखते जो अल्लाह को पसंद है वो करना है। तो हर काम में क्या हम ये देख रहे हैं कि जो अल्लाह ताला को पसंद है मैं वो कर रही हूं, या मैं लोगों की पसंद के काम कर रही हूं? अगर लोगों की पसंद के कर रही हूं तो मेरा तकवा नहीं है। गुनाहों में मैं देखती हूँ कि ये अल्लाह ताला को ना पसंद है, ये उसने हराम किया है, ये उसको ने छोड़ने का हुक्म दिया, मैं फिर भी करती जा रही हूँ, तो ये तकवा नहीं है। और तकवा वालों के लिए जन्नत का वादा है, तकवा वालों के लिए मगफिरत का वादा है, तकवा वालों के लिए कहा गया है कि वो जो मुत्तकी होंगे अल्लाह ताला उन्हीं से नेकियों को भी कबूल करता है। और जो आगे भी आ रहा है, तकवा की बात आ रही है, आगे करेंगे, लेकिन वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वही तुम्हें बचा के रखेगा। अगर ये हो चुका है तो फिर माफी मांग लो, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला तवाबुर रहीम है। कितना बड़ा होप दिलाया है ना कि ये चीजें हो गई हैं तो भी हम माफी मांग लो, अभी भी जिंदगी है, अभी भी मौका है, अभी चांस है। और तौबा का तरीका फिर वही बात है कि सिर्फ अल्लाह की खातिर इस गुनाह को छोड़ा जाए, गुनाह पे शर्मिंदगी भी हो, अजम भी हो कि मैंने नहीं अब दोबारा करना, छोड़ भी दें हम, और फिर उससे माफी भी मांग लें जिससे हमने ये काम किए हों इसके साथ, और अपने लिए दुआएं भी करें। जैसे कुरान करीम में ही वो दुआ भी आती है, रब्बना अग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, और हमारे जो हमारे से पहले गुजरे हैं हमारे भाई, उनके लिए हमारे दिल में कोई गिल ना हो, कोई कीना ना हो। अल्लाह हमें माफ कर दे, और फिर हम दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्री समई व मिन शर्री बसरी व मिन शर्री लिसानी व मिन शर्री कल्बी व मिन शर्री मनी ही। और इसके बचने का एक तरीका ये है कि इंसान इसका इलाज, कि इंसान ये सोच ले कि जिसके बारे में बात करने लगे वो यहाँ पे मौजूद है। अगर मौजूद है तो मैं क्या कहूंगी ये बात, अगर वो सुन रहा है तो क्या कहूंगी ये बात, नहीं कहूंगी तो फिर अब भी ना कहूं, क्योंकि वो तो ना भी सुने तो अल्लाह ताला तो सुन रहा है ना। दूसरे एक बहुत बड़ी इसके बारे में जो टिप है, जो इबत से बचने का तरीका है, हुस्ने ज़न है। मैंने आपको बताया था ना, ज़न से ही बात शुरू होती, ज़न से ही तजस्सुस होता है, ज़न से ही आगे इबत होती। अगर हुस्ने ज़न होगा, यानी जो कोई कुछ करता भी है साथ ही उसको माफ कर दिया, छोड़ो जाने दो, आपने जाने दिया ना और दिल पे नहीं लगाया ना, तो क्या होगा, फिर इबत नहीं होगी। और अगर उसको दिल पे लगा लिया और दिल में बिठा लिया तो आज नहीं तो कल जरूर होगी गइबत। और ये ना हो कि हमारी ये सारी नमाजें, कुरान पढ़ना, तहज्जुदें, नफली रोजे, फर्ज रोजे, हज, उम्रे, सब दूसरों को चले जाएं और वो हमारी वजह से जन्नत में दाखिल हो जाएं और हम रह जाएं पीछे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।